लेवी व्यवस्था अध्याय एक। होम बलि के लिए विधान। यहावे ने मोशे को आह्वान कर उन्हें मिलन वाले तंबू में से यह आदेश दिया, इज़राइल की प्रजा को यह आदेश दो, जब कभी तुम में से कोई व्यक्ति यहावे के लिए बलि अर्पण करे, वह यह बलि किसी गाय बैलों या भेड़ बकरियों में से लेकर आए। यदि उसकी होम बलि ढोरों से है तो वह एक निर्दोष नर पशु को बलि करें। वह इस निर्दोष नर पशु को मिलन वाले तंबू के प्रवेश द्वार पर बलि करें कि वह यहावे द्वारा स्वीकृत हो। वह व्यक्ति अपना हाथ इस पशु के सिर पर रखे कि यह उसके पक्ष में प्रायश्चित बलि के रूप में स्वीकार की जाए। वह यहावे के सामने इस बछड़े को बलि करे और अहरोन के पुत्र जो पुरोहित है इसके रक्त को उस वेदी के चारों ओर छिड़क दे जो मिलन वाले तंबू के प्रवेश पर स्थित है। फिर तुम इस पशु की खाल उतारकर इसे टुकड़ों में काट देना। अहरोन के पुत्र जो पुरोहित है वेदी पर अग्नि रखे और इस अग्नि पर लकड़ियों को सजाकर रखे। अहरोन के पुत्र जो पुरोहित है टुकड़ों सिर और चर्बी को जलती हुई लकड़ियों पर जो वेदी पर है सजाकर रखे। किंतु तुम उस पशु की आंतों और टांगों को जल से धोना और पुरोहित इन सभी को होम बलि के लिए वेदी पर दहन करे। यह यहावे के लिए सुखद सुगंध की होम बलि होगी। किंतु यदि उसकी होम बलि भेड़ बकरियों में से है तो वह एक निर्दोष नर पशु को अर्पण करे। वह उसका वध यहावे के सामने वेदी के उस ओर करे जो उत्तरी दिशा की ओर है और अहरोन के पुत्र जो पुरोहित है इसके रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़क दे। फिर वह इसके सिर और इसकी चर्बी को टुकड़ों में काट दे और पुरोहित इन्हें उन लकड़ियों पर जो अग्नि पर है सजाकर रखे। किंतु आंतों और पैरों को वह जल से धोए और पुरोहित इन सभी को होम बलि के लिए वेदी पर जलाए। यह यहावे के लिए सुखद सुगंध की होम बलि होगी। किंतु यदि वह यहावे के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाता है तो वह अपनी बलि के लिए कपोत अथवा कबूतर के बच्चे लेकर आए। पुरोहित इसे वेदी पर लाए, उसका सिर मरोड़कर उसका वध करे तथा उसे वेदी पर जलाए। इसका रक्त वेदी की एक ओर बहाए जाए। वह उसके गले की थैली और पैरों को वेदी के पूर्वी ओर जो राख डालने का स्थान है फेंक दे। फिर वह उसके पंख पकड़कर फाड़े किंतु उसे अलग ना करे और पुरोहित इन सभी को होम बलि के लिए वेदी पर जलाए। यह यहावे के लिए सुखद सुगंध की होम बलि होगी। लेवी व्यवस्था अध्याय दो। अन्न बलि के लिए विधान। जब यहावे के लिए बलि के रूप में कोई अन्न बलि लेकर आए तो यह भेंट महीन आटे की हो। वह इस पर तेल उंडेले और लोबान रखे। फिर वह इसे अहरोन के पुत्रों के पास जो पुरोहित है लाए। वह उसमें से एक मुट्ठी भर महीन आटा तेल एवं लोबान ले। पुरोहित उसको स्मरण दिलाने वाले भाग के रूप में वेदी पर जलाए। यह अग्नि बलि यहावे के लिए सुखद सुगंध होगी। अन्न बलि का बचा हुआ भाग अहरोन व उनके पुत्रों के लिए निर्धारित है। यह यहावे के लिए अग्नि बलियों का परम पवित्र भाग है। यदि तुम्हारी बलि भट्टी में पकी हुई अन्न बलि हो तो यह सबसे अच्छे आटे से बनी हो। यह तेल में गूथी हुई खमीर रहित रोटी या तेल से चुपड़ी हुई खमीर रहित पपड़ी हो। यदि तुम्हारी बलि तवे पर पकी हुई अन्न बलि है तो यह तेल में गूथे हुए खमीर रहित महीन आटे की हो। तुम इसे टुकड़े टुकड़े कर इस पर तेल उंडेलना। यह एक अन्न बलि है। यदि तुम्हारी बलि कड़ाही में पकी हुई अन्न बलि है तो यह तेल में गूथे हुए महीन आटे की हो। जब तुम यहावे के सामने इन वस्तुओं से बनी अन्न बलि लेकर आओ तो यह पुरोहित के पास लाया जाए और वह इसे वेदी पर लेकर आए। फिर पुरोहित इस अन्न बलि से इसका स्मरण दिलाने वाला भाग लेकर वेदी पर अग्नि बलि के रूप में जलाए। यह यहावे के लिए सुखद सुगंध की अन्न बलि होगी। अन्न बलि का बचा हुआ भाग अहरोन व उनके पुत्रों के लिए निर्धारित है। यह यहावे के लिए अग्नि बलियों का परम पवित्र भाग है। कोई भी अन्न बलि जो तुम यहावे के सामने लेकर आओ वह खमीर के साथ ना बनाई जाए, क्योंकि तुम यहावे को ना तो खमीर की और ना ही मधु की अग्नि बलि भेंट करना। तुम इन्हें यहावे के सामने पहली उपज की बलि के रूप में भेंट करना, किंतु ये वेदी पर यहावे को सुखद सुगंध के लिए भेंट ना की जाए। तुम अपनी सब अन्न बलियों में नमक चढ़ाना। तुम्हारी अन्न बलि से तुम्हारे परमेश्वर की वाचा का नमक अलग ना रहे। अपनी सब बलियों के साथ तुम नमक भेंट करना। यदि तुम यहावे को पहले फल की बलि भेंट करो तो अपने पहले फल बलि में अग्नि बलि के लिए अग्नि में भुने गए नए अन्न की बाले लेकर आना। तुम इस पर तेल लगाना और लोबान रखना। यह एक अन्न बलि है। पुरोहित इसके स्मरण के लिए निर्धारित अंश, छिलका निकाला गया अन्न तेल और इसके सारे लोबान के साथ जलाकर अग्नि बलि के रूप में यहावे को भेंट कर दे। लेवी व्यवस्था अध्याय 3। मेल बलि के लिए विधान। यदि उसकी बलि एक मेल बलि है और यदि वह गाय बैलों से एक पशु की बलि करता है, चाहे वह नर हो अथवा मादा, तो वह निर्दोष पशु को यहावे के सामने भेंट करे। वह अपना हाथ इस बलि के सिर पर रखे और मिलन वाले तंबू के द्वार पर इसका वध करे। फिर अहरोन के पुत्र जो पुरोहित है इसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़क दे। मेल बलि के अर्पण द्वारा वह यहावे को अग्नि बलि स्वरूप यह अर्पित करे, अर्थात वह चर्बी जो आंतों को ढांपती है और वह चर्बी जो आंतों पर लिपटी हुई है, दोनों गुर्दों के साथ उनकी चर्बी जो कमर पर होती है तथा कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन्हें वह गुर्दों सहित अलग कर दे। फिर अहरोन के पुत्र इसे वेदी पर अग्नि बलि के ऊपर रखकर जलाए जो आग पर रखी हुई है। यह यहावे के लिए सुखद सुगंध की अन्न बलि है। किंतु यदि यहावे के लिए मेल बलि के रूप में उसकी बलि भेड़ बकरियों में से है, तो वह इसमें से निर्दोष नर अथवा मादा को बलि करे। यदि वह बलि के लिए एक मेमने को भेंट कर रहा है तो वह इसे यहावे को इस प्रकार भेंट करे। वह इस बलि के सिर पर अपना हाथ रखे और मिलन वाले तंबू के सामने इसका वध करे। अहरोन के पुत्र इसके रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़क दे। मेल बलि की बलि से वह यहावे के लिए अग्नि बलि के रूप में यह अर्पित करे। इसकी चर्बी व मोटी पूछ को वह रीढ़ से अलग करेगा। वह चर्बी जो आंतों को ढांपती है, वह संपूर्ण चर्बी जो आंतों पर है, दोनों गुर्दे उस चर्बी के साथ जो कमर पर है तथा कलेजे के ऊपर की झिल्ली, जिसे वह गुर्दों सहित अलग करेगा। फिर पुरोहित इसे वेदी पर अग्नि में आहार स्वरूप जलाए। यह यहावे के लिए अग्नि बलि है। यदि वह बलि में एक बकरी भेंट कर रहा है तो वह इसे यहावे के सामने भेंट करे। वह अपना हाथ इसके सिर पर रखे और मिलन वाले तंबू के सामने इसका वध करे। अहरोन के पुत्र इसके रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़क दे। इसमें से वह यहावे के लिए अग्नि बलि के रूप में ये प्रस्तुत करे। वह चर्बी जो आंतों को ढांपती है, वह पूरी चर्बी जो आंतों पर है, दोनों गुर्दे उस चर्बी के साथ जो कमर पर है तथा कलेजे के ऊपर की झिल्ली, जिसे वह गुर्दों सहित अलग करेगा। फिर पुरोहित इसे वेदी पर आहार स्वरूप जलते हुए धुएं में भेंट करे। सुखद सुगंध के लिए एक अनबली पूरी चर्बी यहावे की है। यह तुम्हारी पीढ़ियों तथा तुम्हारे निवासों में एक हमेशा की विधि है। तुम चर्बी को और रक्त को कभी ना खाओगे। लेवी व्यवस्था अध्याय 4। पाप बलि के लिए विधान। यहावे ने मोशे को आज्ञा दी, इज़राइल की प्रजा को यह आज्ञा दो, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में उन कार्यों को करता है जो यहावे की व्यवस्थाओं में मना है, यदि कोई अभिषिक्त पुरोहित पाप करता है जिससे कि वह प्रजा पर भी दोष ले आता है, तब वह उस पाप के लिए जो उसने किया है यहावे के सामने एक निर्दोष बछड़े को पाप बलि के रूप में भेंट करे। उस बैल को वह यहावे के सामने मिलन वाले तंबू के द्वार पर लेकर आए, अपना हाथ उस बैल के सिर पर रखे और यहावे के सामने उसका वध करे। फिर वह अभिषिक्त पुरोहित उस बैल के रक्त में से कुछ रक्त लेकर उसे मिलन वाले तंबू में लेकर आए। पुरोहित अपनी उंगली उस रक्त में डुबोकर उसमें से कुछ रक्त को 7 बार यहावे के सामने पवित्र स्थान के पर्दे के सामने छिड़के। पुरोहित कुछ रक्त को सुगंध धूप वेदी के सींगों पर भी डालें, जो यहावे के सामने मिलन वाले तंबू में है। पुरोहित बैल के पूरे रक्त को होम बलि की वेदी के आधार पर उंडेल दे, जो मिलन वाले तंबू के द्वार पर है। वह पाप बलि के लिए प्रयोग किए जाने वाले बैल की पूरी चर्बी उससे हटा दे। वह चर्बी जो आंतों को ढकती है, वह पूरी चर्बी जो आंतों पर है, दोनों गुर्दे उस चर्बी के साथ जो कमर पर है तथा कलेजे के ऊपर की झिल्ली जिसे वह गुर्दों सहित अलग करेगा, ठीक वैसे ही जैसे वह मेल बलि के लिए प्रयोग किए जाने वाले बैल से हटाई गई। पुरोहित होम बलि की वेदी पर इसे धुएं में भेंट करे, किंतु बैल की खाल और इसका सारा मांस, सिर, टांगे, आते तथा इस प्रक्रिया में उत्पन्न गंदगी तथा बैल के शेष अंश को छावनी के बाहर एक साफ स्थान पर जहां राख फेंक दी जाती है लेकर आए, यहां वह लकड़ियों पर इसको जलाए। यदि इज़राइली प्रजा कोई विसंगत कार्य करे जिसके विषय में सभा अनजान है और वे उन कार्यों के कारण दोषी ठहरें जो यहावे की ओर से मना है, जब सभा के सामने पाप प्रकट हो जाए तब सभा पाप बलि के लिए ढोरों में से एक बैल को मिलन वाले तंबू के सामने लेकर आए। सभा के प्रधान यहावे के सामने अपना हाथ बैल के सिर पर रखे और वह यहावे के सामने बैल का वध करें। अभिषिक्त पुरोहित बैल के रक्त में से कुछ रक्त मिलन वाले तंबू में लेकर आए। पुरोहित अपनी उंगली बैल के रक्त में डुबाकर उसमें से कुछ रक्त को 7 बार यहावे के सामने पवित्र स्थान के पर्दे के सामने छिड़के। पुरोहित कुछ रक्त को उस वेदी की सींगों पर भी डालें, जो यहावे के सामने मिलन वाले तंबू में है। पुरोहित बैल के सारे रक्त को होम बलि की वेदी के आधार पर उंडेल दें, जो मिलन वाले तंबू के द्वार पर है। वह उस बैल से उसकी सारी चर्बी को हटाकर उस चर्बी को वेदी पर जलाए। वह इस बैल के साथ भी ठीक वैसा ही करे जैसा उसने पाप बलि के बैल के साथ किया था। पुरोहित प्रजा के लिए प्रायश्चित करे और उन्हें क्षमा की जाएगी। फिर वह इस बैल को छावनी के बाहर लेकर आए और इसको उसी प्रकार जलाए जैसे उसने पहले बैल को जलाया था। यह सभा के लिए पाप बलि है। जब कोई प्रधान पुरुष अनजाने में पाप करता है, यानी वे कार्य करता है जो यहावे अपने परमेश्वर की ओर से मना है, और जब उसे पाप बोध होता है और जो पाप उसने किया है वह प्रकट हो जाता है, तो वह अपनी बलि के लिए एक निर्दोष रोमयुक्त बकरा लेकर आए। वह अपना हाथ उस बकरे के सिर पर रखे और उस स्थान पर उसको बलि कर दे जहां वे यहावे के सामने होम बलि के पशु को बलि करते हैं। यह एक पाप बलि है। फिर पुरोहित अपनी उंगली से उस पाप बलि से कुछ रक्त लेकर होम बलि की वेदी की सींगों पर लगाए और इसके बचे हुए रक्त को वह होम बलि की वेदी के आधार पर उंडेल दे। वह इसकी सारी चर्बी को ठीक वैसे ही वेदी पर जला दे जैसे उसने मेल बलि को की थी। इस प्रकार पुरोहित उस प्रधान द्वारा किए गए पाप के लिए प्रायश्चित करे और उसे क्षमा प्रदान कर दी जाएगी। जब कोई जनसाधारण व्यक्ति अनजाने में उन कार्यों को करने के द्वारा पाप करता है जो यहावे ने ना करने की आज्ञा दी है और इसके द्वारा वह दोषी हो जाता है तथा उसका वह पाप जो उससे हो गया है उस पर प्रकट कर दिया जाता है, तो वह अपने उस पाप की बलि के लिए जो उसने किया है एक निर्दोष बकरी लेकर आए। वह अपना हाथ उस पाप बलि के सिर पर रखे तथा होम बलि के स्थान पर इस पाप बलि को बलिदान करे दे। फिर पुरोहित अपनी उंगली से इसके कुछ रक्त को लेकर होम बलि वेदी के सींगों पर लगाए और इसके बचे हुए रक्त को होम बलि की वेदी के आधार पर उंडेल दे। फिर वह इसकी सारी चर्बी को हटा दे ठीक जैसे मेल बलि पर से चर्बी हटाई गई थी। पुरोहित यहावे को सुखद सुगंध के लिए इसे वेदी पर अग्नि में भेंट कर दें। इस प्रकार पुरोहित उसके लिए प्रायश्चित करेंगे और उसे पाप क्षमा दी जाएगी। किंतु यदि वह बलि स्वरूप एक मेमना पाप बलि के लिए लेकर आता है तो यह एक निर्दोष मादा हो, वह अपना हाथ उस पशु के सिर पर रखे तथा पाप बलि के लिए इसकी बलि उस स्थान पर कर दे जहां होम बलि पशु को बलि किया जाता है। पुरोहित इस पाप बलि के कुछ रक्त में से अपनी उंगली से होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और इसके बचे हुए रक्त को वह वेदी के आधार पर उंडेल दें। फिर वह इसकी सारी चर्बी को हटा दें, ठीक जैसे मेल बलि के मेमने से चर्बी हटाई गई थी। पुरोहित इसे यहावे को होम बलि के लिए वेदी पर अग्नि में भेंट कर दें। इस प्रकार पुरोहित उसके इस पाप के लिए उसका प्रायश्चित करेगा और उसे क्षमा दे दी जाएगी। लेवी व्यवस्था अध्याय 5। यदि कोई व्यक्ति किसी पाप का गवाह है जिसे उसने होते हुए देखा है अथवा उसे इसका एहसास है और सार्वजनिक रूप से शपथ दिए जाने के बाद भी वह इसके विषय में मौन रहता है तो वह उस अपराध का भार स्वयं उठाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अशुद्ध वस्तु को स्पर्श करे, चाहे वह किसी अशुद्ध जंगली पशु का शव हो अथवा किसी अन्य पालतू पशु का शव अथवा किसी ऐसे अशुद्ध जीव का शव हो जो रेंगता हो, और यदि वह इससे अनजान है कि वह अशुद्ध हो चुका है किंतु इसके बाद उसे इसका एहसास हो जाता है तो वह दोषी हो जाएगा। यदि वह किसी मानव मलिनता का स्पर्श करे, चाहे वह किसी भी प्रकार की मलिनता हो, और वह इससे अशुद्ध हो जाता है और वह इससे अनजान है किंतु इसके बाद उसे इसका एहसास हो जाता है तो वह दोषी हो जाएगा। अथवा यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे विचारे भले अथवा बुरे की शपथ लेता है, चाहे कोई भी विषय हो, कोई व्यक्ति बिना सोचे विचारे शपथ लेता है तथा यह उसे मालूम नहीं है और इसके बाद यह उस पर प्रकट हो जाता है तो इसमें से किसी एक विषय में वह दोषी हो जाएगा। जब इसमें से किसी भी विषय के दोष का उसे एहसास होता है और वह उस पाप को स्वीकार करे जो उसने किया है, तो जो पाप उसने किया है उसके लिए वह यहावे के सामने अपनी दोष बलि लेकर आए। वह भेड़ बकरियों में से एक मादा मेमना अथवा एक बकरी पाप बलि के लिए लेकर आए कि पुरोहित उसके द्वारा उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे। किंतु यदि उसके लिए एक मेमना भेंट करना संभव नहीं है तो जो पाप उसने किया है उसके लिए वह यहावे के सामने अपनी दोष बलि के लिए दो कपोत अथवा दो कबूतर के बच्चे लेकर आए, एक पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। वह इसे पुरोहित के पास लाए, वह सर्वप्रथम उसे भेंट करे जो पाप बलि के लिए निर्धारित है। वह इसके सिर इसके गर्दन के पास से मरोड़ दे किंतु पूरी तरह अलग ना करे। वह पाप बलि का कुछ रक्त वेदी के दूसरे सिरे पर छिड़क दे जबकि बचा हुआ रक्त वेदी के आधार पर बहा दिया जाए, यह एक पाप बलि है। फिर वह विधि के अनुसार होम बलि के रूप में दूसरे पक्षी को तैयार करे कि पुरोहित उसके द्वारा उसके पाप के लिए जो उस व्यक्ति ने किया है प्रायश्चित करे और उसका यह पाप क्षमा कर दिया जाएगा। किंतु यदि उसके लिए दो कपोत अथवा दो कबूतर के बच्चे भी भेंट करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो जो पाप उसने किया है उसकी बलि के लिए वह 1.5 किलो महीन आटा पाप बलि के लिए लेकर आए, किंतु इस पर तेल ना लगाए और ना ही इस पर लोबान रखें, क्योंकि यह एक पाप बलि है। वह इसे पुरोहित के पास लेकर आए और पुरोहित इसमें से मुट्ठी भर महीन आटे को इसके स्मरण दिलाने वाले भाग के रूप में लेकर यहावे की अन्य अग्नि बलियों के साथ वेदी पर जलाए, यह एक पाप बलि है। इस प्रकार पुरोहित इनमें से किसी भी पाप के लिए जो उस व्यक्ति ने किया है प्रायश्चित करें और उसका यह पाप क्षमा कर दिया जाएगा। इसका शेष भाग अन्न बलि के समान पुरोहित का होगा। दोष बलि। फिर यहावे ने मोशे को यह आदेश दिया, यदि कोई व्यक्ति विश्वासघात करे तथा अनजाने में यहावे की पवित्र वस्तुओं के संदर्भ में पाप करे, तो वह अपने द्वारा किए गए विश्वासघात के लिए यहावे के सामने दोष बलि के रूप में भेड़ बकरियों में से एक निर्दोष मेढ़े भेंट करे, जिसका मूल्य पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार चांदी का एक शेकेल हो। यह दोष बलि है। उसने जिस पवित्र वस्तु के संदर्भ में पाप किया है उसके लिए वह नुकसान की भरपाई करे। वह इसमें इसके पांचवें भाग को जोड़कर पुरोहित को सौंप दे। पुरोहित दोष बलि के मेढ़े के साथ उसके लिए प्रायश्चित करे और उसका यह पाप क्षमा कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और कोई भी वह कार्य करता है जो यहावे की ओर से मना किया गया है, यद्यपि वह इससे अनजान है, तो भी वह दोषी है और अपने दंड का भार उठाएगा। फिर वह दोष बलि के लिए भेड़ बकरियों में से उपयुक्त मूल्य का एक निर्दोष मेढ़ा ले आए कि पुरोहित उस व्यक्ति द्वारा किए गए उस विश्वासघात के लिए जो उसने अनजाने में किया है प्रायश्चित करें और उसका यह विश्वासघात क्षमा कर दिया जाएगा। यह एक दोष बलि है। निसंदेह वह यहावे की दृष्टि में दोषी था। लेवी व्यवस्था अध्याय 6। यहावे ने मोशे को कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करे, यहावे के विरुद्ध विश्वासघात करे तथा अपने पड़ोसी द्वारा सौंपी गई धरोहर अथवा सुरक्षा के संदर्भ में उससे छल करे अथवा उसे लूटे अथवा अपने पड़ोसी को सताए अथवा उसे कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त हुई हो और वह इसके विषय में झूठ बोलकर झूठी शपथ खाए, यानी इनमें से किसी भी कार्य को करने के द्वारा पाप करे, इसका प्रावधान यह होगा, जब वह पाप करे और उसे इसका एहसास हो जाए तब वह लूटी गई सामग्री अथवा वह जो उत्पीड़न से प्राप्त किया गया है अथवा जो धरोहर उसे सौंपी गई थी अथवा जो खोई हुई वस्तु उसे प्राप्त हुई थी अथवा किसी ऐसी वस्तु के संदर्भ में जिसके लिए उसने झूठी शपथ खाई थी, उसे इसकी पूरी भरपाई करनी होगी और उसे इसका पांचवा भाग अतिरिक्त देना होगा। जिस दिन वह अपनी दोष बलि भेंट करे, उस दिन वह उस व्यक्ति को ये सब वस्तुएं लौटा दे जिसकी ये वस्तुएं थी। तब वह उपयुक्त मूल्य का निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के रूप में यहावे के लिए भेड़ बकरियों में से पुरोहित के पास लेकर आए। यह दोष बलि है। और पुरोहित यहावे के सामने उसके लिए प्रायश्चित संपन्न करे। इस प्रकार उसे इनमें से किसी भी दोष के लिए क्षमा प्रदान कर दी जाएगी। पुरोहित और बलियां। यहावे ने मोशे को यह आदेश दिया, अहरोन और उनके पुत्रों को यह आदेश दो, होम बलि के लिए विधि यह है, होम बलि पूरी रात से लेकर सुबह वेदी की अग्नि पर ही रहे और वेदी पर अग्नि जलती रहे। पुरोहित अपने सफेद मलमल के वस्त्र और अपनी देह पर मलमल की जांघियां पहने, वह वेदी की राख जो अग्नि द्वारा जलाई गई है उठाए और उसे वेदी की एक ओर रख दे। इसके बाद वह अपने ये वस्त्र उतार, दूसरे वस्त्र पहने और राख को छावनी के बाहर एक स्वच्छ स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे, यह बुझने ना पाए, किंतु पुरोहित हर सुबह इस पर लकड़ियां रख दे, इन पर होम बलि को रखे और इस पर मेल बलि के चर्बी वाले भाग को अग्नि में जलाया करे। वेदी पर अग्नि लगातार जलती रहे, यह बुझने ना पाए। अन्न बलि। अन्न बलि के लिए विधि यह है, अहरोन के पुत्र इसे यहावे के लिए वेदी के सामने प्रस्तुत करें। उनमें से एक पुरोहित इस अन्न बलि में से एक मुट्ठी भर आटा, तेल तथा इस पर रखे सारे लोबान को ले और इसे वेदी की अग्नि में जलाए। यह यहावे को स्मरण बलि के लिए भेंट की गई सुखद सुगंध है। इसमें से जो भाग बच जाए, अहरोन और उसके पुत्र उसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल पवित्र स्थान में बिना खमीर की रोटी के रूप में किया जाए। उन्हें इसका इस्तेमाल मिलन वाले तंबू के आंगन में ही करना है। इसे खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने इसे उनके भाग के रूप में अपनी होम बलि में से प्रदान किया है। यह पाप बलि तथा दोष बलि के समान परम पवित्र हैं। अहरोन के पुत्रों में से हर एक इसका इस्तेमाल करें। यहावे को भेंट की गई होम बलियों में से तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह हमेशा की विधि है, जो कोई इन बलियों को छुएगा वह अपने आप पवित्र हो जाएगा। यहावे ने मोशे को यह भी आदेश दिया, जब कभी अहरोन की पौरोहितिक परंपरा के अंतर्गत किसी पुरोहित का अभिषेक किया जाए तो अहरोन और उनके पुत्र यहावे को यह बलि भेंट करें। उस बलि में नियमित अन्न बलि के रूप में सबसे उत्तम 1.5 किलो आटा भेंट किया जाए, आधा सुबह और आधा शाम को। इसे तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब यह पूरी तरह पक जाए तब तुम उसे लेकर टुकड़ों में यहावे को सुखद सुगंध के रूप में अन्न बलि चढ़ाना। उसके पुत्रों में से उसके स्थान पर पुरोहित अभिषिक्त किया जाएगा, वह उस भेंट चढ़ाए। यह यहावे के लिए अग्नि में जलाई हुई हमेशा की विधि के रूप में भेंट पूरी अन्न बलि भेंट हो। पुरोहित की हर एक अन्न बलि यह पूरी तरह से जलाई जाए, इसको खाया ना जाए। पाप बलि। यहावे ने मोशे को यह आदेश दिया, अहरोन और उसके पुत्रों को यह आदेश दो, पाप बलि के लिए विधि यह है। जिस स्थान पर होम बलि के लिए निर्धारित पशु का वध किया जाता है, उसी स्थान पर यहावे के सामने पाप बलि के लिए निर्धारित पशु का वध किया जाए। यह परम पवित्र है, इसको वही पुरोहित खाए जो इसे पाप के लिए भेंट करता है। जरूरी है कि इसको सिर्फ पवित्र स्थान में ही खाया जाए, मिलाप वाले तंबू के आंगन में ही। जो कोई इसके मांस को छू लेगा वह पवित्र हो जाएगा। यदि उसके रक्त के छींटे किसी वस्त्र पर आ पड़े तो जरूरी है कि इसे किसी पवित्र स्थान में ही धो दिया जाए। मिट्टी के जिस बर्तन में इसे पकाया गया था उसे तोड़ दिया जाए। यदि इसे पीतल के बर्तन में पकाया गया हो तो उस पात्र को रगड़ रगड़ कर पानी से धो दिया जाए। अहरोन के पुत्रों में से हर एक पुरुष इसको खा सकता है, यह परम पवित्र है। किंतु किसी पाप बलि को ना खाया जाए जिसका रक्त पवित्र स्थान के मिलन वाले तंबू में प्रायश्चित के लिए लाया गया है, उसको इस अग्नि में जला दिया जाए। लेवी व्यवस्था अध्याय 7। दोष बलि। दोष बलि जो कि परम पवित्र है, उसके लिए तय की गई विधि यह है। जिस स्थान पर वे होम बलि के लिए निर्धारित पशु का वध करते हैं, उसी स्थान पर दोष बलि के लिए निर्धारित पशु का भी वध किया जाए और वह उसके रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़क दे। फिर वह इसकी सारी चर्बी अर्थात मोटी पूछ तथा वह चर्बी जो आंतों को ढकती है, दोनों गुर्दे चर्बी के साथ जो कमर पर है तथा कलेजे के ऊपर की झिल्ली गुर्दों सहित अलग कर भेंट करें। पुरोहित यहावे को इसे होम बलि के रूप में वेदी पर अग्नि में जला दे, यह दोष बलि है। पुरोहितों में से हर एक पुरुष इसको खा सकता है, इसको पवित्र स्थान में ही खाया जाए, यह परम पवित्र है। दोष बलि पाप बलि के ही समान है, उनके लिए एक ही विधि है, इसको वही पुरोहित खाए जो इसके द्वारा प्रायश्चित पूरा करता है। वह पुरोहित जो किसी व्यक्ति के लिए होम बलि भेंट करता है, होम बलि के उस पशु की खाल जो उसने भेंट की है स्वयं के लिए रख ले। उसी प्रकार हर एक अन्न बलि जो तंदूर या कड़ाही में अथवा तवे पर पकाया गया है, वे सभी कुछ उसी पुरोहित की होंगी जो उसे भेंट करता है। हर एक अन्न बलि चाहे तेल मिली हो या तेल रहित, अहरोन के सभी पुत्रों को समान मात्रा में मिलेगी। मेल बलि। उन मेल बलियों के लिए जो यहावे के सामने चढ़ाई जाए, उनके लिए विधि यह है। यदि वह इसे आभार के रूप में भेंट करता है तो वह आभार बलि के साथ तेल से सनी हुई खमीर रहित रोटी, तेल से चुपड़ी पपड़ी तथा तेल से सनी हुई मैदे की रोटी भेंट करे। आभार के रूप में भेंट की गई अपनी मेल बलियों के बलि पशु के साथ वह खमीर युक्त रोटी भी भेंट करे। वह ऐसी हर एक बलि में से एक एक रोटी यहावे को अंशदान के रूप में भेंट करे। यह उसी पुरोहित की होगी जो मेल बलि के पशु के रक्त को छिड़कता है। आभार के रूप में भेंट की गई मेल बलियों की बलि के मांस को उसकी बलि के दिन ही खा लिया जाए, वह प्रातः तक इसमें से कुछ भी बचाकर ना रखे। किंतु यदि उसकी बलि एक मन्नत अथवा स्वेच्छा बलि है तो उसको उस दिन खाया जाए जिस दिन उसने इसे अर्पित किया हो, तथा शेष अंश को अगले दिन खाया जा सकता है। किंतु यदि उस बलि के मांस में से तीसरे दिन कुछ बचा रह गया है तो अग्नि में उसे जला दिया जाए। इसलिए यदि वह मेल बलि के पशु के मांस को तीसरे दिन खा लेता है जिसने उसे भेंट किया है, ना तो बलि स्वीकार होगी और ना ही उसके लिए लाभदायक। यह एक आपत्तिजनक कार्य है और जो कोई व्यक्ति इसको खाता है वह स्वयं अपना दोष उठाएगा। जिस मांस का स्पर्श किसी अपवित्र वस्तु से हो जाए उसको खाया ना जाए, इसे अग्नि में जला दिया जाए। हर एक जो शुद्ध है इसको खा सकता है, किंतु अपनी अशुद्धता में कोई व्यक्ति मेल बलियों की बलि के उस मांस को खा लेता है जो यहावे का है तो उसे लोगों के मध्य से हटा दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी अशुद्ध वस्तु का स्पर्श कर लेता है, चाहे वह मानव मलिनता हो अथवा कोई अशुद्ध पशु अथवा कोई अशुद्ध घृणित वस्तु हो, और वह मेल बलियों की बलि के उस मांस को खा लेता है जो यहावे को अर्पित है, तो उसे उसके लोगों के मध्य से हटा दिया जाए। चर्बी खाना मना है। यहावे ने मोशे को यह आदेश दिया, इज़राइल की प्रजा को यह आदेश दो, तुम किसी बैल भेड़ अथवा बकरी की चर्बी को ना खाना, उस पशु की चर्बी को भी जिसकी स्वाभाविक मृत्यु हो चुकी है या जो वन पशुओं द्वारा मार डाला गया है। तुम उसे किसी अन्य उपयोग के लिए तो रख सकते हो, किंतु निश्चित है उसको खाना मना है। जो व्यक्ति उस पशु की चर्बी को खाता है जिसे यहावे को अग्नि बलि के रूप में भेंट किया गया है, उसे उसके लोगों के मध्य से हटा दिया जाए। तुम अपने घर में किसी पशु अथवा पक्षी के रक्त को ना खाना। जो भी व्यक्ति किसी भी रक्त को खाता है उसे भी उसके लोगों के मध्य से हटा दिया जाए। पुरोहित का हिस्सा। यहावे ने मोशे को यह आदेश दिया, इज़राइल की प्रजा को यह आदेश दो, वह व्यक्ति जो यहावे को अपनी मेल बलियां भेंट करता है, यहावे को उसी मेल बलि में से एक हिस्सा अपनी भेंट के रूप में चढ़ाए, और वह स्वयं अपने हाथों में यहावे को होम बलि के लिए चर्बी एवं छाती लेकर आए कि छाती यहावे के सामने लहराने की बलि के रूप में भेंट की जाए। पुरोहित चर्बी को तो वेदी पर अग्नि में जला दे, किंतु छाती अहरोन और उनके पुत्रों की है। तुम अपनी मेल बलियों की बलियों में से दाहिनी जांग पुरोहित को दे देना। अहरोन के पुत्रों के मध्य से जो पुत्र मेल बलियों के रक्त और चर्बी को भेंट करता है, दाहिनी जांग उसके अंशदान के रूप में उसी की होगी, क्योंकि इज़राइल की प्रजा से मैंने उनकी मेल बलियों की बलियों में से लहराने की बलि के रूप में भेंट की गई छाती और अंशदान की जांग को लेकर उसे पुरोहित अहरोन और उनके पुत्रों को दे दिया है। यह इज़राइल की प्रजा से सर्वदा के लिए पुरोहित अहरोन और उनके पुत्रों को अधिकार के रूप में दे दिया है। यह वह अंश है जो यहावे की अग्नि बलियों में से अहरोन और उनके पुत्रों के लिए है, जिस दिन से उसने उन्हें यहावे के सामने पौरोहितिक सेवा के लिए प्रस्तुत किया, जिस दिन उनका अभिषेक किया गया, उस दिन यहावे ने इज़राइल की प्रजा से उन्हें यह वस्तुएं देने का आदेश दिया है। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक सर्वदा के लिए यह उनका अधिकार है। उपरोक्त विधि होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, संस्कार बलि तथा मेल बलियों के भेंट के लिए है। इसके विषय में आदेश यहावे ने मोशे को सिनाई पर्वत पर उस दिन दिए थे, जिस दिन यहावे ने इज़राइल की प्रजा को सिनाई की मरुभूमि में यहावे के लिए अपनी बलियां प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। लेवी व्यवस्था अध्याय 8। अहरोन और उनके पुत्रों का अभिषेक। फिर यहावे ने मोशे को यह आदेश दिया कि वह अपने साथ अहरोन और उनके पुत्र और साथ में उनके वस्त्र, अभिषेक का तेल, पाप बलि के लिए निर्धारित बैल, दो मेढ़े और एक टोकरी में खमीर रहित रोटी ले और मिलन वाले तंबू के द्वार पर सारी सभा को इकट्ठा करे। तब मोशे ने यहावे के आदेश के अनुसार वैसा ही किया। जब सभा मिलन वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई, तब मोशे ने सभा को इस प्रकार संबोधित किया, जिस कार्यों को पूरा करने का आदेश यहावे ने दिया है वह यह है। फिर मोशे ने अहरोन और उनके पुत्रों को अपने निकट बुलाया और जल से उनको नहलाया। मोशे ने अहरोन को कुर्ता तथा एफोद पहनाकर उस पर कलात्मक रूप से बुनी हुई कोश बांध दी। फिर उन्होंने अहरोन को सीना बंद पहनाया और उसमें उरीम एवं थुम्मीम लगा दिए। उन्होंने उसके सिर पर पगड़ी भी पहना दी और उस पगड़ी के सामने की ओर सोने के टीके अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, ठीक जैसा आदेश यहावे ने मोशे को दिया था। मोशे ने अभिषेक का तेल लेकर पवित्र स्थान और उसके भीतर जो कुछ भी था उसका अभिषेक कर उन्हें परम पवित्र किया। उन्होंने कुछ तेल वेदी पर 7 बार छिड़क दिया, वेदी और इसके सारे पात्रों, चिलमची और उसके आधार को पवित्र करने के लिए उनका अभिषेक किया। फिर उन्होंने अभिषेक का कुछ तेल अहरोन के सिर पर उंडेलकर उन्हें पवित्र करने के लिए उनका अभिषेक किया। इसके बाद मोशे ने अहरोन के पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें अंगरखे पहनाकर उन पर कटिबंध बांधे तथा उन्हें टोपियां पहना दी, ठीक वैसा ही जैसा आदेश यहावे ने मोशे को दिया था। मोशे पाप बलि के लिए निर्धारित बैल लेकर आए और अहरोन और उनके पुत्रों ने पाप बलि के इस बैल के सिर पर अपने हाथ रखे। मोशे ने इस बैल का वध किया और वेदी को पाप दोष से हटाने के लिए अपनी उंगली से उसका कुछ रक्त लेकर वेदी के सींगों पर लगाया। उसके बाद इसके बचे हुए रक्त को वेदी के आधार पर उंडेल दिया और प्रायश्चित पूरा करने के लिए उसे परम पवित्र किया। मोशे ने आंतों की सारी चर्बी, कलेजे के ऊपर की झिल्ली तथा दोनों गुर्दों के साथ उनकी चर्बी को लिया और उसे वेदी पर अग्नि में जलाकर भेंट कर दिया। किंतु बैल, उसकी खाल, मांस और इस प्रक्रिया में उत्पन्न गोबर, इन चीजों को छावनी के बाहर अग्नि में जला दिया, ठीक जैसा आदेश यहावे ने मोशे को दिया था वैसा ही। फिर मोशे ने होम बलि के लिए तय मेढ़े को प्रस्तुत किया। अहरोन और उनके पुत्रों ने उस मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखे। मोशे ने मेढ़े को बलि की और इसके रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़क दिया। उन्होंने इस मेढ़े को टुकड़े किया और इसके सिर, टुकड़ों और ठोस चर्बी को जला दिया। मोशे ने आंतों और टांगों को जल से धोकर पूरे मेढ़े को वेदी पर अग्नि में जलाकर भेंट कर दिया। सुखद सुगंध के लिए यह एक होमबलि, हाँ यहावे को भेंट एक अग्नि बलि थी, ठीक जैसा आदेश यहावे ने मोशे को दिया था वैसा ही। इसके बाद मोशे ने दूसरा मेढ़ा अर्थात संस्कार का मेढ़ा प्रस्तुत किया और अहरोन और उनके पुत्रों ने उस मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखे। मोशे ने मेढ़े को बलि किया और अहरोन के दाएं कान, उनके दाएं हाथ और दाएं पैर के अंगूठे पर उसका कुछ रक्त लगा दिया। मोशे ने अहरोन के पुत्रों को भी पास बुलाकर उनके दाएं कान, उनके दाएं हाथ के अंगूठे और दाएं पैर के अंगूठे पर उसका कुछ रक्त लगा दिया। उसके बाद मोशे ने शेष रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़क दिया। मोशे ने उस मेढ़े की चर्बी, मोटी पूछ, आंतों पर की चर्बी, कलेजे के ऊपर की झिल्ली, दोनों गुर्दे तथा उनकी चर्बी और दाई जांघ ली। उन्होंने यहावे के सामने रखी खमीर रहित रोटी की टोकरी से एक खमीर रहित रोटी, तेल सनी हुई रोटी और एक पपड़ी ली और उन्हें चर्बी के भाग एवं दाई जांघ पर रख दिया। ये सभी वस्तुएं अहरोन ने उसके पुत्रों के हाथों में रखकर इन्हें यहावे को चढ़ाने की भेंट मानकर यहावे के आगे लहराया। मोशे ने इन्हें उनके हाथों से लेकर होम बलि के साथ इन्हें वेदी पर जला दिया। ये यहावे को भेंट की गई सुखद सुगंध के लिए अग्नि बलि के रूप में संस्कार की बलि थी। मोशे ने मेढ़े की छाती भी ली, यह संस्कार के मेढ़े में से मोशे का अंश था और इसे यहावे के सामने लहराने की बलि के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक जैसा आदेश यहावे ने मोशे को दिया था वैसा ही। मोशे ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के रक्त में से कुछ रक्त लेकर इसे अहरोन, उनके वस्त्रों, उनके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर छिड़क दिया। इस प्रकार मोशे ने अहरोन, उनके वस्त्रों, उनके पुत्रों और उनके पुत्रों के वस्त्रों को परम पवित्र किया। इसके बाद मोशे ने अहरोन और उनके पुत्रों को यह आदेश दिया, मिलन वाले तंबू के द्वार पर मांस को उबालो और इसे उस रोटी के साथ खाओ जो रोटी संस्कार बलि की टोकरी में है, ठीक जैसा आदेश मैंने दिया था कि अहरोन और उनके पुत्र इसको खाए। शेष मांस और रोटी को तुम अग्नि में जला देना। 7 दिनों के लिए तुम मिलन वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना जब तक तुम्हारा संस्कार का क्रियाकाल पूरा ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारा संस्कार का क्रियाकाल 7 दिन का होगा। तुम्हारे लिए प्रायश्चित पूरा करने के लिए वही किया जाना जरूरी है जैसा आज किया गया है, ठीक जैसा आदेश यहावे ने दिया है। इसके अतिरिक्त तुम्हें मिलन वाले तंबू के द्वार पर 7 दिनों के लिए दिन रात ठहरे रहना है। यहावे द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना जरूरी है कि तुम्हारी मृत्यु ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा ही आदेश दिया गया है। इस प्रकार अहरोन और उनके पुत्रों ने वे सारे कार्य किए जिनका आदेश यहावे ने मोशे के द्वारा दिया था। लेवी व्यवस्था अध्याय 9। अहरोन द्वारा बलि अर्पण। फिर 8वें दिन मोशे ने अहरोन, उनके पुत्रों और इसराइल के प्रधानों को बुलाया। मोशे ने अहरोन को यह आदेश दिया, अपने लिए गाय बैलों से पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लो और उन्हें यहावे को भेंट करो। उसके बाद तुम इसराइल की प्रजा को यह आदेश दो, पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए 1 साल का निर्दोष बछड़ा और 1 निर्दोष मेमना। मेल बलि के लिए यहावे के सम्मुख भेंट चढ़ाने के हेतु 1 बैल व 1 मेढ़ा तथा तेल से सनी हुई अन्न बलि लो, क्योंकि आज यहावे तुम पर प्रकट होंगे। फिर वे उन सब वस्तुओं को मिलन वाले तंबू के सामने ले आए जिसका आदेश मोशे ने उन्हें दिया था, और सारी सभा निकट आकर यहावे के सामने खड़ी हो गई। मोशे ने उन्हें संबोधित किया, ये है वे कार्य जिन्हें करने का आदेश यहावे ने तुम्हें दिया है कि यहावे के प्रताप का तुम पर प्रकाशमान हो। इसके बाद मोशे ने अहरोन को यह आदेश दिया, वेदी के निकट आ जाओ और अपनी पाप बलि और होम बलि भेंट करो कि तुम स्वयं के लिए और प्रजा के लिए प्रायश्चित पूरा कर सको। इसके बाद प्रजा के लिए बलि अर्पण करो कि उनके लिए प्रायश्चित पूरा कर सको, ठीक जैसा आदेश यहावे ने दिया है। फिर अहरोन ने वेदी के निकट आकर अपनी पाप बलि के लिए निर्धारित उस बछड़े का वध किया। अहरोन के पुत्रों ने उनके सामने रक्त प्रस्तुत किया और उन्होंने इसमें अपनी उंगली डुबोकर कुछ रक्त वेदी की सींगों पर लगाया और शेष रक्त को वेदी के आधार पर उंडेल दिया। फिर उन्होंने पाप बलि के लिए निर्धारित चर्बी, गुर्दे और कलेजे के ऊपर की झिल्ली को वेदी पर अग्नि में जला दिया, ठीक जैसा आदेश यहावे ने मोशे को दिया था, किंतु उन्होंने खाल और मांस को छावनी के बाहर अग्नि में जला दिया। इसके बाद उन्होंने होम बलि के पशु का वध किया। अहरोन के पुत्रों ने उन्हें रक्त सौंप दिया और उन्होंने इसे वेदी के चारों ओर छिड़क दिया। उन्होंने होम बलि के पशु को टुकड़ों में उसके सिर के साथ अहरोन को सौंप दिया और अहरोन ने उन्हें वेदी पर अग्नि में जलाकर भेंट कर दिया। उन्होंने आंतों और टांगों को भी धो करके उन्हें होम बलि के साथ वेदी पर अग्नि में जलाकर भेंट कर दिया। फिर उन्होंने प्रजा के लिए निर्धारित बलि को प्रस्तुत किया। उन्होंने उस बकरे को लेकर जो प्रजा के लिए निर्धारित पाप बलि के लिए था, इसका वध करके पहले बलि के पशु समान भेंट कर दिया। उन्होंने होम बलि के पशु को भी प्रस्तुत कर विधि के अनुसार इसे भेंट किया। इसके बाद उन्होंने अन्न बलि को प्रस्तुत किया। प्रातकाल की होम बलि के अतिरिक्त उन्होंने इसमें से भी मुट्ठी भर भाग लेकर वेदी पर अग्नि में जलाकर भेंट किया। इसके बाद उन्होंने प्रजा के लिए मेल बलि के लिए निर्धारित बैल और मेढ़े का वध किया और अहरोन के पुत्रों ने अहरोन को रक्त सौंप दिया, जिसे उन्होंने वेदी के चारों ओर छिड़क दिया। उन्होंने बैल तथा मेढ़े की चर्बी के भाग, मोटी पूंछ, वह चर्बी जो आंतों को ढकती है, गुर्दे और कलेजे के ऊपर की झिल्ली भी उन्हें सौंप दी। उन्होंने चर्बी के भाग को छाती पर रखा और अहरोन ने उन्हें वेदी पर अग्नि में जलाकर भेंट कर दिया। किंतु छाती और दाई जांघ को अहरोन ने लहराने की बलि के रूप यहावे के सामने प्रस्तुत किया, ठीक जैसा मोशे ने आदेश दिया था। इसके बाद अहरोन ने प्रजा की ओर अपने हाथ उठाकर उनके लिए आशीष वचन बोले और पाप बलि, होम बलि और मेल बलि भेंट करने के बाद नीचे उतर आए। मोशे और अहरोन मिलन वाले तंबू में चले गए और जब उन्होंने मिलन वाले तंबू से बाहर आकर प्रजा के लिए आशीष वचन बोले तो यहावे का प्रताप सारी प्रजा को दिखाई दिया। तब यहावे की उपस्थिति की अग्नि ने प्रकट होकर होम बलि और वेदी पर की चर्बी के भागों को भस्म कर दिया। यह देख सारी प्रजा जय जयकार के नारे के साथ भूमि की ओर नतमस्तक हो गई। लेवी व्यवस्था अध्याय 10। नादाब और अबीहू का पाप। अहरोन के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने अपने धूपदान लिए और उनमें अग्नि रखने के बाद लोबान भी रखा। इस प्रकार उन्होंने यहावे के सामने बिना आज्ञा की अपवित्र अग्नि भेंट की। यहावे की ओर से इसका आदेश ना था। यहावे की उपस्थिति से अग्नि निकलकर उन्हें भस्म कर दिया और यहावे के सामने ही उनकी मृत्यु हो गई। मोशे ने अहरोन से कहा, यहावे के यही विचार थे, उनके द्वारा जो मेरे निकट आते हैं मैं पवित्र ठहराया जाऊं तथा सारी प्रजा के सामने मेरी महिमा हो। इस पर अहरोन शांत ही रहे। मोशे ने अहरोन के चाचा उज्जियल के पुत्र मिशाएल और एल्जाफन को भी बुलाकर उन्हें यह आदेश दिया, निकट आ जाओ और अपने भाइयों के लाश पवित्र स्थान के सामने से हटा लो और छावनी के बाहर ले जाओ। तब वे निकट आए और लाशों को उनके अंगरखों सहित छावनी से बाहर ले गए, ठीक जैसा मोशे ने आदेश दिया था। इसके बाद मोशे ने अहरोन और उनके पुत्र एलियाजर और इथामार को यह आदेश दिया, अपने सिर के बालों को ना मुंडाओ और ना ही अपने वस्त्र फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए और यहावे का क्रोध सारी सभा पर भड़क उठे। केवल तुम्हारे भाई अर्थात इज़राइल की सारी प्रजा यहावे के द्वारा लगाई हुई इस आग के लिए विलाप करें। तुम तो मिलन वाले तंबू के द्वार से बाहर भी ना जाना, अन्यथा तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम पर यहावे के तेल का अभिषेक है। तब उन्होंने मोशे के आदेश के अनुसार ही किया। इसके बाद यहावे ने अहरोन को यह आदेश दिया, जब तुम मिलन वाले तंबू में प्रवेश करो तो ना तो तुम और ना ही तुम्हारे पुत्र दाखरस अथवा दाख मधु का उपयोग करें कि तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। यह तुम्हारी आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए विधि है कि तुम पवित्र और अपवित्र के बीच, शुद्ध और अशुद्ध के बीच भेद कर सको। इज़राइल की प्रजा को उन सारी विधियों की शिक्षा देनी अनिवार्य है जिनको यहावे ने तुम्हें मोशे के द्वारा दिया है। फिर मोशे ने अहरोन और उनके दोनों बचे हुए पुत्रों एलियाजर और इथामार को यह आदेश दिया, यहावे को अग्नि में अर्पित अन्न बलि में से शेष रह गए भाग जो खमीर रहित है उसको लेकर वेदी के निकट ही खाओ, क्योंकि यह परम पवित्र है। तुम इसको पवित्र स्थान में ही खाना, क्योंकि यह यहावे को अर्पित बलि में से तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों के लिए निर्धारित भाग है, क्योंकि मुझे ऐसा ही आदेश दिया गया है। किंतु तुम तथा तुम्हारी संतानी लहराने की बलि स्वरूप भेंट छाती और जांघ को किसी स्वच्छ स्थान में खा सकते हो, क्योंकि यह इज़राइल की प्रजा की मेल बलियों में से तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों एवं पुत्रियों के लिए निर्धारित भाग के रूप में तुम्हें दिया गया है। वे अग्नि बलि के लिए निर्धारित चर्बी के भाग के साथ जांघ को ऊंचा उठाते और छाती को लहराते हुए यहावे के सामने लहराने की बलि के रूप में लाएंगे। यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के लिए स्थायी भाग है, ठीक जैसा आदेश यहावे ने दिया था वैसा ही। किंतु मोशे ने पाप बलि के लिए निर्धारित बकरे के विषय में खोजबीन की तो मालूम हुआ कि उसको तो जलाया जा चुका है। इसलिए मोशे अहरोन के बचे हुए पुत्रों एलियाजर तथा इथामार पर क्रोधित हो गए। मोशे ने उनसे यह प्रश्न किया, तुमने पाप बलि के पशु को पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? क्योंकि यह तो परम पवित्र है, तथा यहावे ने यह तुम्हें प्रजा के दोष अपने ऊपर उठाकर और यहावे के सामने उनके लिए प्रायश्चित पूरा करने के लिए दिया था। इसका तो रक्त तक पवित्र स्थान के भीतर कक्ष में नहीं लाया गया। जरूरी था कि तुम इसको पवित्र स्थान में खाते, ठीक जैसा आदेश मैंने दिया था। किंतु अहरोन ने मोशे को उत्तर दिया, सुनिए, आज ही उन्होंने यहावे के सामने अपनी पाप बलि और होम बलि चढ़ाई है, फिर भी मेरे साथ यह सब घटित हो गया है। यदि आज मैं पाप बलि के पशु को खा लेता तो क्या यह यहावे की दृष्टि में भला होता? जब मोशे ने यह सुना तो यह उन्हें सही ही जान पड़ा। लेवी व्यवस्था अध्याय 11। भोज्य तथा अभोज्य प्राणी। यहावे ने मोशे और अहरोन को आदेश दिया, इज़राइल की प्रजा को यह आदेश दो, पृथ्वी पर के सारे पशुओं में से कोई भी पशु जिसके खुर अलग है, जिसके खुर फटे हो और वह पागुर करता है, तुम्हारे लिए भोज्य है। परंतु वे पशु जो पागुर करते हैं अथवा जिनके खुर चिरे हैं, उनमें से ये पशु तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। ऊंट, क्योंकि यह पागुर तो करता है किंतु इसके खुर चिरे नहीं, यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इसी प्रकार चट्टानी बिज्जू, क्योंकि यद्यपि यह पागुर करता है परंतु इसके खुर चिरे नहीं होते, यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इसी प्रकार खरगोश भी, यह पागुर तो करता है परंतु इसके खुर चिरे नहीं होते, यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सुअर, क्योंकि यद्यपि इसके खुर चिरे अर्थात इसके खुर दो भागों में तो है किंतु यह पागुर नहीं करता, तब यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम्हें ना तो उनके मांस को खाना है और ना ही उनके शवों को स्पर्श, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। तुम इन जलचरों को खा सकते हो, समुद्र अथवा नदियों के वे सारे जलचर जिनके पक्ष और शल्क है, तुम उनको खा सकते हो। किंतु समुद्र और नदियों के वे जलचर अर्थात जल के वे जंतु जो समूहों में रहते हैं और जल के समस्त प्राणी जिनके ना तो पंख है और ना छिलके, वे तुम्हारे लिए घृणित है। और क्योंकि वे तुम्हारे लिए घृणित है, तुम उनके मांस को खा नहीं सकते और उनके शव तुम्हारे लिए घृणित वस्तु हो। जल के कोई भी जीव जिसके पक्ष और शल्क नहीं है, वह तुम्हारे लिए घृणित है। पक्षियों में से तुम्हारे लिए घृणित ये हैं और जिनको खाना मना है वे ये हैं, गरुड़, गिद्ध, काला गिद्ध, लाल चील और काली चील, और समस्त प्रकार की चीले, समस्त प्रकार के कोवे, शुतुरमुर्ग, उल्लू, सागर काक और शिकारे की सभी प्रजातियां, छोटी प्रजाति के उल्लू, जलकोय और बड़ी प्रजाति के उल्लू, बखारी उल्लू, जल मुर्गी और सब भक्षी गिद्ध, छोटा गरुड़, सभी प्रकार के बगुले, टिटीहरी और चमगादड़, सभी प्रकार के पंख वाले कीड़े जो अपने चारों पैरों पर चलते हैं, तुम्हारे लिए घृणित है। फिर भी वे उड़ते हुए कीड़े जो अपने चारों पैरों पर चलते हैं तथा जिनके पैरों के ऊपर एक मुड़ी हुई टांग होती है, जिसके बल पर वे भूमि पर कूदते हैं, तुम उनमें से इनको खा सकते हो। सभी प्रकार की टिड्डियां, सभी प्रकार की पतंगे, सभी प्रकार के झींगुर और सभी प्रकार के टिड्डे, किंतु सभी प्रकार के उड़ते हुए कीड़े जो चार पैरों पर चलते हैं, वे तुम्हारे लिए घृणित हैं। इन सभी जीवों के कारण भी तुम अशुद्ध हो जाओगे। जो कोई इनके शव को छू लेगा वह संध्या तक अशुद्ध रहेगा, और जो कोई इनके शव को हटाता है वह अपने वस्त्रों को धो डाले, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। उन पशुओं के विषय में जिनके खुर चिरे तो है किंतु पूरी तरह दो भागों में नहीं है और पागुर भी नहीं करते, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनको छू लेगा वह अशुद्ध हो जाएगा। सभी चौपायों में वे प्राणी जो अपने पंजों पर चलते हैं, तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनके शव को छू लेगा वह शाम तक अशुद्ध रहेगा, और जो कोई इनके शव को हटाता है वह अपने वस्त्रों को धो ले, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा, वे पशु तुम्हारे लिए अशुद्ध है। भूमि पर जो जंतु रेंगते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। वे ये हैं: छछुंदर, चूहा, सभी प्रकार की गोह, छिपकली, मगरमच्छ, टिकटिक, सांडा और गिरगिट। वे जंतु जो रेंगते हैं इनमें से वे सभी तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनके शव को छू लेता है वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। इनमें से उनका शव यदि किसी वस्तु पर गिर जाता है तो वह वस्तु अशुद्ध हो जाएगी, चाहे वह लकड़ी की हो अथवा वस्त्र, खाल अथवा टाट की और किसी भी कार्य में इस्तेमाल की जाती हो। इसे जल में रख देना और शाम तक यह अशुद्ध रहे, इसके बाद यह वस्तु शुद्ध मानी जाए। यदि किसी मिट्टी के पात्र में इन जंतुओं का शव गिर जाता है, उस पात्र में जो कुछ भी हो वह अशुद्ध हो जाएगा, उस पात्र को तोड़ दिया जाए। यदि इस पात्र का जल किसी भी खाने की वस्तु पर गिर जाए तो वह खाना अशुद्ध माना जाएगा। और इसी प्रकार यदि यह जल किसी पीने के पदार्थ पर गिर जाए तो वह पीने का पदार्थ अशुद्ध माना जाएगा। कोई भी वस्तु जिस पर इन जंतुओं के शव का भाग गिर जाए वह वस्तु अशुद्ध मानी जाएगी, चाहे वह कोई भट्टी हो अथवा चूल्हा। इसे चूर चूर कर दिया जाए, वे अशुद्ध है और तुम्हारे लिए अशुद्ध बनी रहेगी। फिर भी झरना अथवा जल कुंड जहाँ जल इकट्ठा किया जाता है वह तो शुद्ध रहेगा, किंतु जो कोई इनके शव को छू लेगा वह अशुद्ध होगा। जिस बीज को बोया जाना है यदि इन जंतुओं के शव का कोई भाग उन बीजों में गिर जाता है तो उस बीज को स्वच्छ ही माना जाएगा, किंतु यदि उन बीजों पर जल डाला गया है और इन जंतुओं के शव का कोई भाग उस पर गिर जाता है तो वे बीज तुम्हारे लिए अशुद्ध होंगे। यदि उन पशुओं में से जो तुम्हारे लिए खाने योग्य है किसी पशु की मृत्यु हो जाए और कोई उसके शव को छू ले तो वह व्यक्ति शाम तक अशुद्ध रहेगा। जो इस पशु के शव में से कुछ भाग को खा लेता है वह व्यक्ति भी अपने वस्त्रों को धो डाले और वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जो इसके शव को हटाए वह व्यक्ति भी अपने वस्त्र को धो डाले और वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। हर एक जंतु जो भूमि पर रेंगता है वह तुम्हारे लिए घृणित है और उसको खाया ना जाए। वे जंतु जो भूमि पर रेंगते हैं उसमें से हर एक जो अपने पेट पर रेंगता है, जो चार पैरों पर चलता है और जो बहुत पैर वाले हैं, तुम उनको ना खाना, क्योंकि वे घृणित है। कोई भी जंतु जो रेंगता है उसके द्वारा तुम स्वयं को घृणित ना करना और ना ही स्वयं को अशुद्ध करना, जिससे कि तुम अशुद्ध हो जाओ, क्योंकि मैं वही यहावे तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसलिए स्वयं को शुद्ध करो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उन जंतुओं के द्वारा स्वयं को अशुद्ध ना करना जो भूमि पर रेंगते हैं, क्योंकि मैं ही यहावे हूँ जिसने तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाला कि तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊं। इसलिए जरूरी है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं तथा पक्षियों और हर एक प्राणी जो जल में है तथा जो भूमि पर रेंगते हैं उनके लिए यही विधि है, जिससे शुद्ध अथवा अशुद्ध और खाने तथा ना खाने की वस्तुओं में भेद किया जा सके। लेवी व्यवस्था अध्याय 12। प्रसूता का शुद्धिकरण। यहावे ने मोशे को कहा, इज़राइल की प्रजा को यह आदेश दो, जब कोई स्त्री पुत्र को जन्म दे तो वह 7 दिन के लिए अशुद्ध रहेगी। जैसे ऋतु स्राव में अशुद्ध रहती है, 8वें दिन उस बालक के खाल का खतना कर दिया जाए। वह स्त्री रक्त स्राव के नियत 33 दिन तक शुद्ध होने की क्रिया में रहेगी। जब तक उसके शुद्ध होने के दिन पूरे ना हो जाए वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुएगी और ना ही पवित्र स्थान में प्रवेश करेगी। किंतु यदि वह पुत्री को जन्म दे तो वह 2 सप्ताह तक अशुद्ध रहेगी। जैसे वह ऋतु स्राव में होती है, वह स्त्री रक्त स्राव के नियत 66 दिन तक शुद्ध होने की क्रिया में रहेगी। जब उस स्त्री की शुद्ध होने की क्रिया पूर्ण हो जाए, चाहे वह पुत्र के लिए हो अथवा पुत्री के लिए, वह मिलन वाले तंबू के द्वार पर पुरोहित के सामने होम बलि के लिए 1 वर्ष का मेमना तथा पाप बलि के लिए 1 कबूतर का बच्चा अथवा 1 कपोत का बच्चा लेकर आए। तब पुरोहित इसे उस स्त्री के प्रायश्चित पूरा करने के लिए यहावे को भेंट करे और वह अपने रक्तस्राव से शुद्ध हो जाएगी। यह विधि हर एक प्रसूता के लिए है, चाहे वह पुत्र को जन्मे अथवा पुत्री को। किंतु यदि वह स्त्री एक मेमना खरीदने में असमर्थ है तो वह दो कपोत अथवा दो कबूतर के बच्चे लेकर आए, एक होम बलि के लिए और अन्य पाप बलि के लिए। इस प्रकार पुरोहित उस स्त्री के लिए प्रायश्चित पूरा करे और वह स्त्री पवित्र हो जाएगी। लेवी व्यवस्था अध्याय 13। त्वचा के रोगों के बारे में नियम। यहावे ने मोशे और अहरोन को यह आदेश दिया, यदि किसी व्यक्ति की त्वचा पर सूजन, चकते अथवा कोई चमकीला धब्बा हो और यदि यह उसकी त्वचा पर कोढ़ का संक्रमण बन जाए, तब उस व्यक्ति को पुरोहित अहरोन अथवा उनके किसी पुरोहित पुत्र के सामने लाया जाए। पुरोहित उस व्यक्ति की त्वचा पर के धब्बे का निरीक्षण करेगा और यदि उस संक्रमित स्थान के रोए सफेद हो गए हो और संक्रमण त्वचा से गहरा ज्ञात होता हो तो यह निश्चित ही कोढ़ का संक्रमण है। फिर जब पुरोहित उस व्यक्ति का निरीक्षण पूरा कर ले तब उसे अशुद्ध घोषित कर दे। यदि त्वचा पर का धब्बा सफेद तो है किंतु संक्रमण त्वचा से गहरा मालूम नहीं होता है और इस स्थान के रोए भी सफेद नहीं हुए हैं तो पुरोहित उस संक्रमित व्यक्ति को 7 दिन के लिए अलग रखे। 7वें दिन पुरोहित उस व्यक्ति का निरीक्षण करे और यदि उसे प्रतीत हो कि संक्रमण तो ज्यों का त्यों है किंतु वह त्वचा में फैला नहीं है तो पुरोहित उस व्यक्ति को और 7 दिन के लिए अलग रखे। 7वें दिन पुरोहित दोबारा उस व्यक्ति का निरीक्षण करे, यदि संक्रमित स्थान का सुधार होने के कारण उसका रंग हल्का हो गया है और वह त्वचा पर नहीं फैला है तो पुरोहित उसे शुद्ध घोषित कर दे। यह एक चकते मात्र है, वह व्यक्ति अपने वस्त्र धो ले और शुद्ध हो जाए। किंतु यदि पुरोहित के सामने शुद्ध प्रमाणित होने के बाद वह धब्बा त्वचा पर फैलने लगे तो वह व्यक्ति स्वयं को दोबारा पुरोहित के सामने प्रस्तुत करे। पुरोहित इसका निरीक्षण करे और यदि उसे यह जान पड़े कि त्वचा पर धब्बा फैल रहा है तो पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे, यह कोढ़ का रोग है। यदि कोढ़ का संक्रमण किसी पुरुष पर है तो उसे पुरोहित के सामने लाया जाए। पुरोहित उसका निरीक्षण करे, यदि उसकी त्वचा में सफेद रंग की सूजन है और उसके उस स्थान के रोए भी सफेद हो गए हैं तथा सूजन में खुला घाव है तो यह उस व्यक्ति की त्वचा पर पुराना कोढ़ का रोग है। पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे, किंतु वह उस व्यक्ति को इसलिए दूसरे लोगों से अलग ना करे कि वह अशुद्ध है। यदि कोढ़ त्वचा में और अधिक फूट जाए और कोढ़ उस व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक पूरी देह में फैल जाए जहां तक पुरोहित इसको देख सके, जब पुरोहित इसको बारीकी से देख ले कि कोढ़ उस व्यक्ति के पूरे शरीर में फैल गया है तो वह उस व्यक्ति को इस रोग से शुद्ध घोषित कर दे, क्योंकि यह पूरी तरह से सफेद रंग का हो गया है इसलिए वह व्यक्ति शुद्ध होगा। किंतु यदि उसे त्वचा पर घाव दिखाई दे तो वह व्यक्ति अशुद्ध होगा। पुरोहित त्वचा के उस घाव को ध्यान से देखे और उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे, बिना चमड़ी का मांस अशुद्ध है और यह कोढ़ का रोग है। किंतु यदि त्वचा का घाव दोबारा सफेद रंग का हो जाए तो वह व्यक्ति पुरोहित के सामने आए, पुरोहित इसको ध्यान से देखे और यदि वह धब्बा सफेद रंग का हो गया है तो पुरोहित उस संक्रमित व्यक्ति को शुद्ध घोषित कर दे, वह शुद्ध है। जब किसी व्यक्ति की त्वचा पर फोड़ा हो गया है और वह फोड़ा स्वस्थ हो जाए तथा उस फोड़े के स्थान पर सफेद अथवा लालिमा युक्त सफेद रंग की सूजन हो जाए तब पुरोहित को इसको दिखवाया जाए। पुरोहित इसको ध्यान से देखे, यदि उसे यह लगे कि यह त्वचा में फैल रहा है और इसके रोए भी सफेद हो गए हैं तब पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे, यह कोढ़ का संक्रमण है जिसकी शुरुआत फोड़े से हुई है। किंतु यदि पुरोहित इसको ध्यान से देखे और पाए कि त्वचा के रोए सफेद नहीं हुए हैं और यह त्वचा में फैल नहीं रहा है तथा त्वचा का रंग हल्का हो रहा है तो पुरोहित उस व्यक्ति को 7 दिन अलग रखे। यदि यह त्वचा में और अधिक फैल रहा है तो पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे, यह एक संक्रमण है। किंतु यदि सफेद रंग का धब्बा त्वचा पर तो है परंतु यह त्वचा में फैल नहीं रहा है, तो यह फोड़े का चिन्ह मात्र है। तब पुरोहित उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित कर दे। यदि किसी की त्वचा अग्नि से जल गई है और त्वचा पर घाव से एक सफेद अथवा लालिमा युक्त सफेद धब्बा हो गया है, तो पुरोहित इसको ध्यान से देखे और यदि इस धब्बे पर के रोए सफेद हो गए हैं और संक्रमण त्वचा से गहरा मालूम होता हो, तो यह कोढ़ का रोग है जिसकी शुरुआत जलने के घाव से हुई है। पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे, यह कोढ़ का संक्रमण है। किंतु यदि पुरोहित इसको जांचता है और यह पाता है कि उस धब्बे पर के रोए सफेद नहीं हुए है और संक्रमण त्वचा में गहरा नहीं है, परंतु इसका रंग हल्का पड़ गया है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को 7 दिन अलग रखे। 7वें दिन पुरोहित उसको दोबारा जांचे। यदि यह त्वचा में फैल रहा है तो पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे, यह कोढ़ का संक्रमण है। किंतु यदि धब्बा तो त्वचा पर ज्यों का त्यों है, परंतु वह त्वचा में फैला नहीं है परंतु उसका रंग हल्का पड़ गया है, तो यह जलने के घाव से उत्पन्न सूजन है। पुरोहित उस व्यक्ति को तब शुद्ध घोषित कर दे, क्योंकि यह तो जलने से उत्पन्न हुआ चिन्ह मात्र है। यदि किसी पुरुष अथवा महिला के सिर या दाढ़ी पर रोग का संक्रमण हो, तो पुरोहित इसका निरीक्षण करे और यदि संक्रमण त्वचा में गहरा मालूम हो और उस स्थान के रोम महीन भूरे रंग के हो गए हो, तो पुरोहित उसे अशुद्ध घोषित कर दे, यह सेहुआ है, सिर एवं दाढ़ी का कोढ़। किंतु यदि पुरोहित इस घाव के संक्रमण की जांच करे और यह पाए कि संक्रमण त्वचा से गहरा नहीं है और ना ही उस स्थान में काले रोए है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को घाव के संक्रमण के कारण 7 दिन अलग रखे। 7वें दिन पुरोहित संक्रमण की जांच करे और यदि सेहुआ त्वचा में नहीं फैला है और उस स्थान पर भूरे रोए भी नहीं है तथा सेहुए के कारण संक्रमण त्वचा से गहरा नहीं है, तो वह व्यक्ति अपना सिर मुंडा ले, किंतु वह अपने सेहुए पर उस्तरा ना चलाए। तब पुरोहित उस व्यक्ति को 7 दिन और अलग रखे। फिर 7वें दिन पुरोहित उस सेहुए की जांच करे। यदि सेहुआ त्वचा में और अधिक नहीं फैल रहा है और यह त्वचा में गहरा मालूम नहीं होता, तो पुरोहित उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित कर दे, वह व्यक्ति अपने वस्त्रों को धोकर शुद्ध हो जाए। किंतु यदि उसके शुद्ध होने के बाद वह सेहुआ उसकी त्वचा में और अधिक फैलता जाता है, तो पुरोहित उसकी जांच करे और यदि यह पाए कि यह त्वचा में फैल गया है, तो वह रोम के भूरे होने की प्रतीक्षा ना करे, वह व्यक्ति अशुद्ध है। किंतु यदि उसकी जांच के अनुसार सेहुए में कोई बदलाव नहीं है किंतु उसमें काले रोए उग आए हैं, तो वह सेहुआ स्वस्थ हो गया है, वह व्यक्ति शुद्ध है और पुरोहित उसे शुद्ध घोषित कर दे। जब किसी पुरुष अथवा स्त्री की त्वचा पर सफेद चमकदार धब्बे हो, तो पुरोहित इसकी जांच करे और यदि त्वचा पर यह चमकदार धब्बे हल्के सफेद रंग के हो, तो यह दाद है जो त्वचा में फूट निकले है, वह व्यक्ति शुद्ध है। यदि किसी पुरुष के बाल झड़ गए हो, तो वह गंजापन है किंतु वह शुद्ध है। किंतु यदि उसके सिर के सामने के ओर सिर के दोनों ओर के बाल झड़ गए हैं और उसका माथा चंदला हो गया है, तो वह शुद्ध है। परंतु यदि उसका सिर अथवा माथा चंदला हो गया है और उस पर लालिमा युक्त सफेद रंग का संक्रमण हो गया है, तो यह कोढ़ है जो उसके चंदूले माथे और सिर से फूट निकला है। तब पुरोहित इसकी जांच करे और यदि सिर अथवा बाल के संक्रमण की सूजन त्वचा पर कोढ़ की लालिमा युक्त सफेद रंग की सूजन के समान है, तो वह व्यक्ति कोढ़ का रोगी है, तब अशुद्ध है। निश्चित ही पुरोहित उसे अशुद्ध घोषित कर दे, क्योंकि संक्रमण उसके सिर पर हुआ है। वह व्यक्ति जो कोढ़ के रोग से संक्रमित हुआ है, उसके वस्त्र फाड़ दिए जाए, उसका सिर उगाड़ दिया जाए और वह अपने मुख का निचला भाग ढक कर ऊंचे स्वर में कहे, अशुद्ध अशुद्ध। अपने संक्रमण की पूरी अवधि में वह अशुद्धि की स्थिति में ही होगा। वह अशुद्ध है तथा अकेले में रहेगा, उसका निवास छावनी के बाहर ही होगा। वस्त्र में कोढ़ की फफूंदी। यदि किसी वस्त्र में कोढ़ की फफूंदी पाई जाती है, चाहे वह वस्त्र ऊनी हो अथवा मलमल का, मलमल अथवा ऊन के ताने बाने का हो, चमड़ा हो या चमड़े से बनी कोई वस्तु हो, यदि यह संक्रमण वस्त्र अथवा चमड़े के वस्त्र में अथवा ताने में अथवा बाने में हो या चमड़े से बनी किसी वस्तु में हरे रंग की अथवा लालिमा हो तो यह कोड है और इसे पुरोहित को दिखाया जाना आवश्यक है। तब पुरोहित उस चिन्ह की जांच करे और इस संक्रमित वस्तु को 7 दिन अलग रखे। 7वें दिन पुरोहित इस चिन्ह की दोबारा जांच करे और यदि संक्रमण वस्त्र में ताने में अथवा बाने में अथवा चमड़े में फैल गया हो और चाहे वह चमड़ा किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता हो तो यह असाध्य कुष्ठ रोग का लक्षण है, यह अशुद्ध है। जिस वस्त्र ताने बाने ऊन मलमल अथवा चमड़े की किसी वस्तु में यह संक्रमण पाया जाए तो आवश्यक है कि उसको जला दिया जाए क्योंकि यह असाध्य कोढ़ है, आवश्यक है कि इसको अग्नि में जला दिया जाए। किंतु यदि पुरोहित इसकी जांच करे और यह पाए कि संक्रमण वस्त्र में ताने बाने में अथवा चमड़े की वस्तु में नहीं फैला है तो पुरोहित उस संक्रमित वस्त्र को धोने का आदेश दे तथा और 7 दिन के लिए उसे अलग कर दे। जब जिस वस्त्र में संक्रमण पाया गया है और उसको धो लिया गया है तो पुरोहित इसकी दोबारा जांच करे और यदि इस वस्तु में मौजूद धब्बे में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह फैला भी नहीं है तो यह अशुद्ध ही माना जाएगा और आवश्यक है कि तुम अग्नि में इसको जला दे, चाहे यह फफूंद पीछे के भाग में हो अथवा आगे। यदि पुरोहित इसकी जांच करे और उसे यह मालूम हो कि धोने के बाद इसकी चमक कम नहीं हुई है तब पुरोहित उसे उस वस्त्र या चमड़े में से फाड़कर निकाल दे। किंतु यदि यह चिन्ह वस्त्र ताने अथवा बाने और चमड़े पर दोबारा उभर आए तो यह उसमें फैल रहा है, आवश्यक है कि उस संक्रमित वस्तु को आग में जला दिया जाए। जब तुमने उस संक्रमित वस्त्र ताने अथवा बाने अथवा चमड़े की वस्तु को धो दिया है तो इसको दूसरी बार धो दिया जाए और यह शुद्ध माना जाएगा। यह किसी कोढ़ से संक्रमित ऊन या मलमल के वस्त्र ताने अथवा बाने अथवा चमड़े की किसी वस्तु को शुद्ध अथवा अशुद्ध घोषित करने की विधि है। लेवी व्यवस्था अध्याय 14 कोढ़ी को शुद्ध ठहराने की विधि। यहावे ने मोशे को यह आदेश दिया, किसी कोढ़ी के शुद्ध हो जाने की पुष्टि की विधि यह है, जब उसे पुरोहित के सामने लाया जाए, पुरोहित छावनी के बाहर जाकर इसकी जांच करे और यदि उस कोढ़ी की व्याधि स्वस्थ हो गई है तब पुरोहित उस व्यक्ति के लिए जिसको शुद्ध किया जाना है 2 जीवित शुद्ध पक्षी, देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल डोरी लाने का आदेश दे। फिर पुरोहित बहते हुए जल पर मिट्टी के एक पात्र में एक पक्षी को बलि करने का आदेश भी दे। इसके बाद वह उस जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी, लाल डोरी और जूफा के साथ लेकर उन्हें तथा उस जीवित पक्षी को उस पक्षी के लहू में डुबा दे जिसे बहते हुए जल पर बलि किया गया था। पुरोहित इसे 7 बार उस व्यक्ति पर छिड़क दे जिसे कोढ़ से शुद्ध किया जा रहा है। फिर पुरोहित उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित कर दे और उस जीवित पक्षी को खुले मैदान में छोड़ दे। फिर वह व्यक्ति जिसे शुद्ध किया जा रहा है अपने वस्त्रों को धो डाले, अपने सारे बाल मुंडवा ले और स्नान करके शुद्ध हो जाए। इसके बाद वह छावनी में तो प्रवेश कर सकता है किंतु 7 दिन तक वह अपने घर से बाहर ही निवास करे। 7वें दिन वह अपने सिर के बाल, दाढ़ी तथा बोहों और हाँ अपने समस्त बाल मुंडवा ले, अपने वस्त्रों को धो डाले और स्नान कर स्वच्छ हो जाए। 8वें दिन वह 1 वर्षीय 2 निर्दोष नर मेमने, 1 वर्षीय निर्दोष मादा भेड़, अन्न बलि के लिए तेल मिला हुआ 5 किलो मैदा और 1/3 लीटर तेल ले। फिर जो व्यक्ति उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित कर रहा है वह मिलन वाले तंबू के प्रवेश स्थल पर उस व्यक्ति और इन वस्तुओं को यहावे के सामने भेंट करे। फिर पुरोहित 1 नर मेमने और 1/3 लीटर तेल को दोष बलि स्वरूप लेकर लहराने की बलि के रूप में यहावे के सामने भेंट करे। इसके बाद पुरोहित उस नर मेमने का पवित्र स्थान के उस स्थान में वध करे जहां पाप बलि और होम बलि वध की जाती है, क्योंकि दोष बलि पाप बलि के समान पुरोहित का निर्धारित अंश है, यह परम पवित्र है। पुरोहित उस दोष बलि के रक्त का कुछ भाग लेकर उसे उस व्यक्ति के दाएं कान के सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे और दाएं पांव के अंगूठे पर लगा दे जिसको शुद्ध किया जा रहा है। इसके बाद पुरोहित उस एक तिहाई तेल में से कुछ भाग लेकर उसे अपने बाई हथेली पर उंडेल दे। फिर पुरोहित अपनी बाई हथेली में रखे बचे हुए तेल में अपने दाएं हाथ की उंगली डुबाकर यहावे के सामने उस तेल में से कुछ तेल को 7 बार छिड़क दे। अब जो तेल उसकी हथेली में बचा रह गया है, पुरोहित शुद्ध होने वाले व्यक्ति के दाएं कान के सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे और दाएं पांव के अंगूठे पर लगा दे, जिन पर दोष बलि का रक्त लगा हुआ है। जबकि पुरोहित की हथेली में रखे बचे हुए तेल को पुरोहित उस व्यक्ति के सिर पर भी लगा दे जिसे शुद्ध किया जा रहा है। फिर पुरोहित उस व्यक्ति की ओर से यहावे के सामने प्रायश्चित करे। इसके बाद पुरोहित पाप बलि भेंट करे और उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे जिसे उसकी अशुद्धता से परिशोधन किया जा रहा है। यह सब करने के बाद वह होम बलि पशु का वध कर दे। पुरोहित उस होम बलि एवं अन्न बलि को वेदी पर भेंट कर दे। इस प्रकार पुरोहित उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे और वह व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। किंतु यदि वह व्यक्ति दरिद्र और लाने के लायक ना हो तो वह अपने लिए प्रायश्चित के लिए हिलाने की बलि के रूप में भेंट दोष बलि के लिए 1 नर मेमना और अन्न बलि के लिए तेल मिला हुआ 1.5 किलो मैदा और 1/3 लीटर तेल, 2 कबूतर अथवा 2 कबूतर के बच्चे, 1 पाप बलि के लिए तथा 1 होम बलि के लिए, इनमें से वह जो कुछ भी देने में समर्थ हो ले ले। 8वें दिन अपने शुद्ध होने के लिए वह इन्हें मिलन वाले तंबू के द्वार पर यहावे के सामने पुरोहित के पास लेकर आए। पुरोहित दोष बलि के इस मेमने और 1/3 लीटर तेल को ले और यहावे के सामने लहराने की बलि के रूप में भेंट करे। फिर पुरोहित दोष बलि के इस मेमने का वध करे। पुरोहित इस दोष बलि के लहू में से कुछ लहू को लेकर उस व्यक्ति के दाएं कान के सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे और दाएं पांव के अंगूठे पर लगा दे जिसको शुद्ध किया जाना है। पुरोहित अपनी बाई हथेली में कुछ तेल उंडेले और अपनी दाएं हाथ की उंगली से अपने बाएं हथेली में रखे तेल में से कुछ तेल को 7 बार यहावे के सामने छिड़के। अब पुरोहित जो तेल उसकी हथेली में बचा रह गया है उससे कुछ तेल जिस व्यक्ति को शुद्ध किया जा रहा है उसके दाएं कान के सिरे पर लगाएगा, कुछ तेल व्यक्ति के दाएं हाथ के अंगूठे और उसके दाएं पैर के अंगूठे पर लगाएगा। दोष बलि के खून लगे स्थान पर ही पुरोहित तेल लगाएगा। पुरोहित की हथेली में रखे बचे हुए तेल को पुरोहित उस व्यक्ति के सिर पर लगा दे जिसको शुद्ध किया जा रहा है कि पुरोहित उस व्यक्ति की ओर से यहावे के सामने प्रायश्चित करे। इसके बाद पुरोहित 1 कबूतर अथवा 1 युवा कबूतर जो भी वह व्यक्ति देने में समर्थ हो भेंट करे। अन्न बलि के साथ पाप बलि के लिए 1 तथा होम बलि के लिए 1। फिर पुरोहित उस व्यक्ति की ओर से यहावे के सामने प्रायश्चित करे जिसको शुद्ध किया जाना है। यह उस व्यक्ति के लिए 1 विधि है जिसमें कोढ़ रोग का संक्रमण है और जिसके अपने शुद्ध होने की आवश्यकताओं के लिए साधन सीमित है। फफूंदी से शुद्धिकरण। फिर यहावे ने मोशे और अहरोन को यह आदेश दिया, जब तुम कनान देश में प्रवेश करो जिसका अधिकारी मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे आधिपत्य देश के 1 आवास में कोढ़ रोग की फफूंदी मैं लगा दूंगा। तब वह गृह स्वामी पुरोहित के पास आकर यह सूचना देगा, मुझे अपने घर में कोढ़ रोग के समान एक चिन्ह दिखाई दिया है। इससे पहले कि पुरोहित उस घर में जाकर उस चिन्ह की जाँच करे, वह यह आदेश दे कि वे उस घर को खाली कर दें। ऐसा ना हो कि उस आवास में मौजूद सारी वस्तुएं अशुद्ध हो जाए। उसके बाद पुरोहित उस आवास में प्रवेश कर उसकी जांच करें। वह उस चिन्ह की जांच करे और यदि घर की दीवारों पर यह चिन्ह हरी अथवा लाल सतह से नीचे दबी हुई प्रतीत हो तो पुरोहित उस घर से बाहर निकलकर प्रवेश द्वार पर आकर उस घर को 7 दिन के लिए उसे बंद कर दे। 7वें दिन पुरोहित उसको दोबारा जांचे। यदि वास्तव में वह चिन्ह घर की दीवारों में फैल गया है तो पुरोहित उन्हें यह आदेश दे कि वे उन चिन्ह युक्त पत्थरों को निकालकर नगर से बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दें। इसके बाद पुरोहित उस संपूर्ण घर को भीतर से खुरचवा दे और वे उस खुरचन को नगर के बाहर अशुद्ध स्थान पर फेंक दें। फिर वे दूसरे पत्थर लेकर उन्हें निकाले गए पत्थरों के स्थान पर लगा दें और गारा लेकर उस आवास की पुनः लिपाई पोताई कर दें। किंतु यदि उसके द्वारा पत्थरों को निकलवाए जाने, घर को खुरचे जाने तथा पुनः पलस्तर लीपे पोते जाने के बाद उस घर में वह फफूंदी फूट पड़ती है, तो पुरोहित उसमें प्रवेश कर उसकी जांच करें। यदि उसे यह प्रतीत होता है कि वास्तव में वह चिन्ह आवास में फैल गया है, तो यह उस आवास में एक असाध्य रोग है, यह अशुद्ध है, इसलिए उस आवास को ढा दिया जाए। वह उसके पत्थर, लकड़ी और संपूर्ण पलस्तर को नगर के बाहर अशुद्ध स्थान पर ले जाए। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति उस समय में उस घर में प्रवेश कर ले जिसे पुरोहित ने बंद कर दिया था, तो वह व्यक्ति शाम तक अशुद्ध रहेगा। इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति उस घर में विश्राम करता है या भोजन कर लेता है, वह भी अपने वस्त्रों को शुद्ध करे। यदि इसके विपरीत पुरोहित उस आवास में प्रवेश कर निरीक्षण करे और यह पाए कि उस घर की पुनः पलस्तर करने के बाद वह फफूंदी वास्तव में नहीं फैली है, तो पुरोहित उस आवास को शुद्ध घोषित कर दे, क्योंकि यह रोग उसमें पुनः प्रकट नहीं हुआ है। तब पुरोहित उस आवास को शुद्ध करने के लिए दो पक्षी, देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल डोरी लेकर एक पक्षी को बहते हुए जल पर मिट्टी के एक पात्र में बलि करे। इसके बाद वह उस जीवित पक्षी के साथ देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल डोरी को उस बलि किए हुए पक्षी के रक्त तथा बहते हुए जल में डुबाकर उस घर पर 7 बार छिड़के। इस प्रकार वह उस घर का शुद्धिकरण उस पक्षी के लहू तथा बहते हुए जल के साथ साथ देवदार की लकड़ी, जूफा तथा लाल डोरी के साथ करे। फिर वह उस जीवित पक्षी को नगर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। इस प्रकार वह उस घर के लिए प्रायश्चित पूरा करे और वह आवास शुद्ध हो जाएगा। किसी भी प्रकार के कोढ़ के रोग के लिए यही विधि है। सेहुआ के लिए, कोढ़ से संक्रमित वस्त्र अथवा घर के लिए, सूजन के लिए, पपड़ी के लिए अथवा किसी भी प्रकार के चमकदार धब्बे के लिए उन पर यह प्रकट हो जाए कि क्या अशुद्ध है अथवा क्या शुद्ध। कोढ़ रोग के लिए यही विधि है। लेवी व्यवस्था अध्याय 15। शारीरिक स्रावों से संबंधित विधि। यहावे ने मोशे और अहरोन को ये आदेश दिए, इज़राइल वंशजों को यह आदेश दो, यदि किसी व्यक्ति की देह से कोई स्राव हो रहा हो, वह स्राव अशुद्ध है, यह उसकी अशुद्धता ही मानी जाएगी, चाहे उसकी देह से स्राव हो रहा हो अथवा स्राव रुक गया हो। स्रावग्रस्त व्यक्ति जिस बिछोने पर विश्राम करता है, वह बिछोना अशुद्ध हो जाता है, और हर एक वस्तु जिस पर वह बैठ जाता है, वह भी अशुद्ध हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति उसके बिछोने को छू लेता है, तो वह व्यक्ति अपने वस्त्रों को धोकर स्नान करे और वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु पर बैठ जाता है जिस पर वह स्रावग्रस्त व्यक्ति बैठता रहा है, तो वह अपने वस्त्रों को धोकर स्नान करे तथा वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति उस स्रावग्रस्त व्यक्ति को छू लेता है, तो वह व्यक्ति अपने वस्त्रों को धोकर स्नान करे तथा वह शाम तक अशुद्ध रहे। अथवा वह स्रावग्रस्त व्यक्ति किसी शुद्ध व्यक्ति पर थूक देता है, तो वह शुद्ध व्यक्ति भी अपने वस्त्रों को धोकर स्नान करे तथा वह शाम तक अशुद्ध रहे। हर एक काठी जिस पर वह सवारी करता है, वह काठी अशुद्ध हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति उन वस्तुओं में से किसी को भी छू लेता है जो स्रावग्रस्त व्यक्ति के नीचे रही है, तो वह शाम तक अशुद्ध रहेगा, और जो कोई व्यक्ति उनका वहन करता है, तो वह अपने वस्त्रों को धो डाले, स्नान करे तथा वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। इसी प्रकार स्रावग्रस्त व्यक्ति अपने हाथों को बिना धोए यदि किसी व्यक्ति को छू लेता है, तो वह व्यक्ति अपने वस्त्रों को धोकर स्नान करे तथा वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि स्रावग्रस्त व्यक्ति किसी मिट्टी के पात्र को छू लेता है, तो उस पात्र को तोड़ डाला जाए, किंतु यदि पात्र लकड़ी का है, तो उसे जल में धोया जाए। जब स्रावग्रस्त व्यक्ति अपने स्राव से शुद्ध हो गए हैं, तो वह अपने शुद्ध होने के लिए 7 दिनों की गिनती कर ले। तब वह अपने वस्त्रों को धो डाले और बहते हुए जल में स्नान करे, तब वह शुद्ध हो जाएगा। आठवें दिन वह अपने लिए दो कपोत अथवा कबूतर के दो बच्चे लेकर मिलन वाले तंबू के द्वार पर यहावे के सामने आए और इन्हें पुरोहित को दे दे। पुरोहित इनमें से एक को पाप बलि के लिए तथा दूसरे को होम बलि के लिए भेंट करे। इस प्रकार पुरोहित उसके लिए उसके स्राव के कारण यहावे के सामने प्रायश्चित पूरा करे। यदि किसी व्यक्ति का वीर्य उत्सर्जन हो गया है तो वह स्नान के द्वारा सारे शरीर को धो डाले और वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जहाँ तक वस्त्र अथवा चर्म वस्त्र का संबंध है, जिस पर वीर्य गिरा हुआ हो उस वस्त्र को जल से धो डाला जाए तथा वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से संभोग करे और इस प्रक्रिया में उसका वीर्य उत्सर्जन हुआ हो तो वे दोनों स्नान करे, वे शाम तक अशुद्ध रहेंगे। जब किसी स्त्री से स्राव हो रहा हो और यदि वह स्राव रक्त है तो वह स्त्री अपनी ऋतु स्राव अशुद्धता की अवधि में 7 दिन के लिए होगी और जो कोई उस स्त्री को छुए वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। हर एक वह वस्तु अशुद्ध होगी जिस पर वह अपनी ऋतु स्राव अशुद्धता की अवधि में लेटती है तथा वह वस्तु भी जिस पर वह बैठती है। जो कोई भी उसके बिछोने को छू लेता है वह अपने वस्त्रों को धोकर स्नान करे, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जो कोई उस वस्तु को छू लेता है जिस पर वह बैठती है तो वह अपने वस्त्रों को धो डाले तथा स्नान करे, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। चाहे यह उसका बिछोना अथवा कोई भी वस्तु है जिस पर वह बैठती है, यदि कोई उसको छू लेता है तो वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यदि कोई पुरुष उसके साथ वास्तव में संभोग कर लेता है और इस प्रकार उस स्त्री की ऋतुस्राव की अशुद्धता उस पुरुष पर आ जाती है तो वह 7 दिनों के लिए अशुद्ध होगा और हर एक बिछोना जिस पर वह लेटता है अशुद्ध हो जाएगा। यदि किसी स्त्री को रक्त का स्राव उसके ऋतुस्राव अशुद्धता की अवधि में ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी अनेक दिनों तक होता रहे तो वह ऋतुस्राव की अशुद्धता की अवधि के समान अपने इस अशुद्ध स्राव में भी अशुद्ध रहेगी। कोई भी वह बिछोना जिस पर वह अपने स्राव के पूरे दिनों में लेटती है वह उसके ऋतुस्राव के अशुद्ध बिछोने के समान होगा और हर एक वह वस्तु जिस पर वह बैठती है वह उसके ऋतुस्राव के समान अशुद्ध होगी। उसी प्रकार जो कोई उसको छू लेता है वह अशुद्ध होगा और वह अपने वस्त्रों को धो डाले तथा स्नान करे, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जब वह स्त्री अपने स्राव से शुद्ध हो जाती है तो वह अपने शुद्ध होने के लिए 7 दिनों की गिनती कर ले, उसके बाद वह शुद्ध होगी। 8वें दिन वह अपने लिए 2 कपोत अथवा 2 कबूतर के बच्चे लेकर उन्हें मिलन वाले तंबू के द्वार पर पुरोहित के सामने लाए। पुरोहित उनमें से एक को पाप बलि तथा दूसरे को होम बलि के लिए भेंट करे। इस प्रकार उसके स्राव के कारण पुरोहित उसके लिए यहावे के सामने प्रायश्चित करे। इस प्रकार तुम इज़राइल वंशजों को उनकी अशुद्धता से अलग रखोगे, ऐसा ना हो कि वे मेरे मिलन वाले तंबू को जो उनके बीच में है अशुद्ध करे और उनकी अशुद्धता के कारण उनकी मृत्यु हो जाए। यह विधि उस व्यक्ति के लिए है जिसका स्राव हो रहा है और जिस व्यक्ति का वीर्य उत्सर्जन हो गया है जिससे वह अशुद्ध हो जाता है, और उस स्त्री के लिए भी जो अपनी ऋतु स्राव अशुद्धता के कारण अस्वस्थ है, हाँ उसके लिए जिससे स्राव हो रहा है, चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री, अथवा उस पुरुष के लिए भी जो उस स्त्री से संभोग कर लेता है जो अशुद्धता की स्थिति में है। लेवी व्यवस्था अध्याय 16। प्रायश्चित के लिए व्यवस्था विधि। जब अहरोन के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद उनके यहावे की उपस्थिति में प्रवेश के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तब मोशे को यहावे का यह संदेश प्राप्त हुआ। यहावे ने मोशे से कहा, अपने भाई अहरोन को चेता दो कि वह पर्दे के भीतर परम पवित्र स्थान में संदूक के ऊपर के करुणासन के सामने कभी भी अपनी इच्छा से प्रवेश ना करे, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं करुणासन पर बादलों में प्रकट हुआ करूंगा। इन निर्देशों की पूरी तरह से पालन करने के बाद ही अहरोन परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। पाप बलि के लिए 1 बछड़ा और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा लाना है। वह मलमल का पवित्र अंगरखा पहने, अपनी देह पर मलमल की जांघिया पहने, मलमल का कमरबंद कसे और मलमल की पगड़ी बांधे, ये पवित्र वस्त्र हैं। पुरोहित इन्हें पूर्ण स्नान के बाद ही पहने। वह इज़राइल सभा से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। इसके बाद अहरोन उस बछड़े को पाप बलि के लिए भेंट करे, जो उसके स्वयं के लिए तय की गई है कि इसके द्वारा वह स्वयं के लिए तथा अपने परिवार के लिए प्रायश्चित पूरा करे। इसके बाद वह 2 बकरे ले और उन्हें मिलन वाले तंबू के प्रवेश पर यहावे के सामने प्रस्तुत करे। अहरोन उन दोनों बकरों के लिए पासे फेंके, एक पासा तो यहावे के लिए तथा दूसरा अजाजेल बकरे के लिए। फिर अहरोन उस बकरे को, जिस पर यहावे के लिए पासा पड़ा था, पाप बलि के रूप में भेंट कर दे। किंतु वह बकरा जिस पर अजाजेल बकरे के लिए पासा पड़ा, वह यहावे के सामने जीवित लाया जाए कि उस पर प्रायश्चित पूरा करके उसे निर्जन प्रदेश में अजाजेल के लिए छोड़ दिया जाए। फिर अहरोन पाप बलि के बछड़े को, जो स्वयं उसके लिए तय है, भेंट करे और वह स्वयं के लिए एवं अपने परिवार के लिए प्रायश्चित पूरा करे। वह पाप बलि के इस बछड़े का वध करे जो स्वयं उसके लिए तय है। वह यहावे के सामने वेदी पर से कोयलों से भरा हुआ धूपदान और 2 मुट्ठी भर बहुत ही महीन पिसा हुआ सुगंध धूप पर्दे के अंदर लेकर आए। वह इस धूप को यहावे के सामने आग पर डाल दे कि धुएं का बादल करुणासन को ढांक ले, जो साक्षी पट्टियां की संदूक पर है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा वह इस बैल का लहू लेकर उसे पूर्व दिशा की ओर करुणासन के सामने अपनी उंगली से छिड़क दे। हाँ, करुणासन के समक्ष इसके कुछ रक्त को अपनी उंगली से 7 बार छिड़क दे। फिर अहरोन पाप बलि के उस बकरे की बलि करे जो प्रजा के लिए, और इसके लहू को पर्दे के भीतर लाकर इसके साथ वैसा ही करे जैसा उसने बछड़े के लहू के साथ किया था। इसे करुणासन के सामने लाकर करुणासन पर छिड़क दे। वह परम पवित्र स्थान के लिए इज़राइल वंशजों की अशुद्धता तथा उनके सारे पापों के संबंध में किए गए अपराध के लिए प्रायश्चित पूरा करे, और इसी प्रकार वह मिलन वाले तंबू के लिए भी करे, जो उनकी अशुद्धताओं के बीच उनके साथ रहता है। जब वह प्रायश्चित पूरा करने के लिए परम पवित्र स्थान में जाता है, तब तक मिलन वाले तंबू में कोई भी व्यक्ति ना रहने पाए, जब तक वह बाहर ना आ जाए कि वह अपने लिए, अपने परिवार तथा इज़राइल की सारी सभा के लिए प्रायश्चित पूरा कर सके। फिर वह बाहर उस वेदी के पास जाए जो यहावे के सामने है, और इसके लिए प्रायश्चित पूरा करे। वह बछड़े का कुछ लहू और बकरे का कुछ लहू लेकर इसे वेदी के सभी सींगों पर लगा दे तथा अपनी उंगली से इस पर 7 बार लहू को छिड़क कर इसको पवित्र करे, और इस प्रकार वह इज़राइल वंशजों की अशुद्धियों की स्थिति में से इसे पवित्र करे। वह परम पवित्र स्थान, मिलन वाले तंबू तथा वेदी के लिए प्रायश्चित पूरा करने के बाद एक जीवित बकरे को भेंट करे। अहरोन उस जीवित बकरे के सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर इज़राइल वंशजों के सारे अधर्म के कामों और उनके सारे अपराधों और पापों को स्वीकार करे, और इन्हें इस बकरे के सिर पर लादकर इसे इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के द्वारा निर्जन प्रदेश में छोड़ दे। यह बकरा बीहड़ जगह में उनके सारे अधर्म के कामों को उठा लेगा। वह व्यक्ति उस बकरे को निर्जन प्रदेश में छोड़कर आए। इसके बाद अहरोन मिलन वाले तंबू में आकर उन मलमल के कपड़ों को उतार दे जो उसने परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के पहले पहने थे। वह उन वस्त्रों को वहीं छोड़ दे। वह पवित्र स्थान में ही स्नान कर अपने वस्त्र पहन ले, और पवित्र स्थान से बाहर आकर अपने लिए तय होम बलि और प्रजा के लिए तय होम बलि चढ़ाकर स्वयं के लिए तथा प्रजा के लिए प्रायश्चित पूरा करे। फिर वह पाप बलि की चर्बी को वेदी पर आग में जलाकर भेंट कर दे। वह व्यक्ति जो अजाजेल को छोड़कर आया था, अपने वस्त्रों को धो डाले, स्नान करे। इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करे। जरूरी है कि पाप बलि के बैल को तथा पाप बलि के बकरे को जिनका लहू परम पवित्र स्थान में प्रायश्चित पूरा करने के लिए लाया गया था, छावनी से बाहर ले जाए, वे उनकी खाल, उनके मांस और उनके गोबर को आग में जला दें। वह व्यक्ति जो उनको जलाता है अपने वस्त्रों को धो डाले, स्नान करे, इसके बाद ही छावनी में प्रवेश करे। तुम्हारे लिए सदा की विधि यह होगी, सातवें महीने में उस महीने के दसवें दिन अपने अपने जीव को दुख देने के अंतर्गत तुम स्वदेशी अथवा विदेशी जो तुम्हारे बीच में रहते हैं कोई भी कार्य ना करना, क्योंकि यही वह दिन है जिस दिन तुम्हारे शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित पूरा किया जाएगा और तुम यहावे के सामने अपने सारे पापों से शुद्ध हो जाओगे। यह तुम्हारे लिए एक विशेष विश्राम शब्बात होगा कि तुम अपने अपने जीव को दुख दो। यह एक सदा की विधि है। मलमल के पवित्र वस्त्र पहनकर प्रायश्चित प्रक्रिया वह पुरोहित पूरा करेगा जिसे उसके पिता के स्थान पर पुरोहित सेवा के लिए संस्कृत तथा अभिषिक्त किया गया है। वह परम पवित्र स्थान के लिए, मिलन वाले तंबू के लिए और वेदी के लिए प्रायश्चित पूरा करेगा। वही पुरोहित सभी पुरोहितों और सभा की सारी प्रजा के लिए भी प्रायश्चित पूरा करेगा। यह तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इज़राइल प्रजा के लिए उसके सभी पापों के कारण वर्ष में एक बार प्रायश्चित पूरा किया जाए। मोशे ने ठीक वैसा ही किया जैसा यहावे ने आदेश दिया था। लेवी व्यवस्था अध्याय 17। प्रायश्चित के लिए रक्त। यहावे ने मोशे को यह आज्ञा दी, अहरोन उसके पुत्रों तथा इज़राइल वंशजों को यह संदेश दो, यह वह आदेश है जो यहावे के द्वारा निकाला गया है। इज़राइल वंशजों में से कोई भी पुरुष जो किसी बछड़े, मेमने अथवा किसी बकरे का वध छावनी के भीतर अथवा छावनी के बाहर करे और वह इसे मिलन वाले तंबू के द्वार पर यहावे के तंबू के सामने यहावे के लिए बलि के रूप में भेंट करने के लिए ना लाए तो उस व्यक्ति को हत्या का आरोपी माना जाएगा। उस व्यक्ति ने लहू बहाया है और उस व्यक्ति को प्रजा से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा करने का कारण यह है कि इज़राइल वंशज उनकी वे बलियां जिनका बलिदान वे खुले मैदान में कर रहे थे, इन बलियों को पुरोहित के पास मिलन वाले तंबू के द्वार पर यहावे के सामने लाकर उन्हें यहावे को मेल बलि के रूप में भेंट करें। पुरोहित लहू को मिलन वाले तंबू के द्वार पर स्थित यहावे की वेदी पर छिड़क दे और चर्बी को सुखद सुगंध के रूप में आग में जलाकर यहावे को भेंट कर दे। अब इसके बाद वे अपना बलि बकरा देवता को भेंट ना किया करें जिनका यह काम व्यभिचार के समान था। यह उनके लिए तथा उनकी सारी पीढ़ियों के लिए सदा की एक विधि होगी। तुम उन्हें यह संदेश देना, इज़राइल वंशजों में से अथवा विदेशियों में से यदि कोई व्यक्ति जो उनके बीच में रहते हैं बलि अथवा होम बलि भेंट करे और उसे मिलन वाले तंबू के द्वार पर यहावे के लिए भेंट करने के लिए ना लाए तो उस व्यक्ति को भी प्रजा से बाहर निकाल दिया जाए। इज़राइल वंशजों में से अथवा विदेशियों में से कोई व्यक्ति जो उनके बीच में रहता है तथा लहू को खाता हो, मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध हो जाऊंगा जिसने लहू को खाया है तथा उसे प्रजा से बाहर कर दूंगा, क्योंकि देह का जीवन लहू में रहता है और मैंने तुम्हें यह इसलिए दिया है कि तुम इसके द्वारा वेदी पर प्रायश्चित पूरा कर सको। अतएव मैंने इज़राइल वंशजों को यह आदेश दिया, ना तुम में से कोई और ना ही कोई विदेशी जो तुम्हारे बीच में रहता है लहू को खाए। इज़राइल वंशजों में से अथवा विदेशियों में से किसी व्यक्ति के हाथ में जो उनके बीच में रहते हैं यदि शिकार में कोई खाने योग्य पक्षी अथवा खाने योग्य पशु आ जाए तो वह उसके लहू को बह जाने दे तथा इस लहू को धूली से ढांक दे, क्योंकि सभी प्राणियों की देह का जीवन लहू में रहता है। इसलिए मैंने इज़राइल वंशजों को यह आदेश दिया है, यह जरूरी है कि तुम किसी भी देह के लहू को ना खाया करो, क्योंकि देह का जीवन लहू में ही रहता है। उसे जो इसको खाएगा वह बाहर कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वदेशी अथवा विदेशी उस पशु को खा ले जिसे वन्य पशु द्वारा फाड़ डाला गया हो, तो वह अपने वस्त्रों को धोकर स्नान करे, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा, इसके बाद वह शुद्ध हो जाएगा। किंतु यदि वह उनको ना ही धोता और ना ही स्नान करता है, तो वह अपने दोष का भार स्वयं उठाएगा। लेवी व्यवस्था अध्याय 18। अनैतिक संबंध के विषय में यहावे ने मोशे को यह आदेश दिया, इज़राइल वंशजों को यह संदेश दो, मैं यहावे तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मिस्र देश के कार्यों के अनुसार व्यवहार नहीं करोगे जहाँ तुम रहा करते थे, और ना ही कनान देश के कार्यों का जहाँ मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ। तुम उनकी विधियों का पालन नहीं करोगे। तुम मेरे नियमों का पालन करना और मेरी विधियों का पालन करते हुए उनका अनुसरण करना, मैं यहावे तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मेरे नियमों और विधियों का पालन करोगे, जो इनका अनुसरण करेगा वह इनके कारण जीवित रहेगा, मैं ही वह यहावे हूँ। तुम में से कोई भी अपने कुटुंबी से संभोग ना करे, मैं ही वह यहावे हूँ। अपनी माता से संभोग करके तुम अपने पिता का अपमान ना करना, वह तुम्हारी जन्म देने वाली माता है, तुम उससे संभोग ना करना। तुम अपने पिता की पत्नी से संभोग ना करना, यह तुम्हारे पिता का अपमान होगा। तुम अपनी बहन से संभोग ना करना, चाहे वह तुम्हारे पिता से पैदा हुई हो अथवा तुम्हारी माता से पैदा हुई हो, चाहे उसका पालन पोषण तुम्हारे साथ हुआ हो अथवा किसी अन्य परिवार में, तुम उनसे संभोग ना करना। अपनी पोती अथवा अपनी नातिन से संभोग ना करना, तुम उनसे संभोग ना करना, क्योंकि यह तुम्हारा स्वयं का ही अपमान होगा। तुम अपनी सौतेली माता की कन्या से संभोग ना करना, तुम्हारे पिता से जन्मी कन्या से, वह तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम उससे संभोग ना करना। तुम अपने पिता की बहन से संभोग ना करना, वह तुम्हारे पिता की कुटुंबी है। तुम अपनी मौसी से संभोग ना करना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की कुटुंबी है। तुम अपने पिता के भाई का अपमान उसकी पत्नी से संभोग करने के द्वारा ना करना, ना इसका प्रयास ही करना, वह तुम्हारी चाची है। तुम अपनी बहू से संभोग ना करना, वह तुम्हारे पुत्र की पत्नी है, तुम उससे संभोग ना करना। तुम अपने भाई की पत्नी से संभोग ना करना, यह तुम्हारे भाई का अपमान होगा। तुम किसी महिला और उसकी पुत्री से भी संभोग ना करना, और ना ही उसके पुत्र की कन्या से, और ना ही उसकी पुत्री की कन्या से संभोग करना, वे कुटुंबी हैं, यह व्यभिचार है। तुम अपनी पत्नी की बहन से विवाह ना करना, जब तक तुम्हारी पत्नी जीवित है, तुम उससे संभोग ना करना। तुम किसी महिला के मासिक स्राव की अशुद्धता के काल में संभोग के उद्देश्य से ना जाना। तुम अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ संभोग करके उसके साथ स्वयं को भ्रष्ट ना करना। तुम अपनी संतानों में से किसी को भी मोलेक को भेंट ना करना, और ना ही अपने परमेश्वर के नाम को कलंकित करना, मैं ही वह यहावे हूँ। तुम स्त्री से संभोग करने के समान किसी पुरुष से संभोग ना करना, यह एक घृणित कार्य है। तुम किसी पशु से भी संभोग करके स्वयं को भ्रष्ट ना करना, और ना ही कोई स्त्री संभोग के उद्देश्य से किसी पशु के सम्मुख जाए, यह अनर्थ है। इन कार्यों में से किसी भी कार्यों को करने के द्वारा तुम स्वयं को भ्रष्ट ना करना, क्योंकि इन्हीं कार्यों के कारण सभी जनता ने, जिन्हें मैं तुम्हारे सामने से खदेड़ने पर हूँ, स्वयं को भ्रष्ट कर लिया है। क्योंकि देश भ्रष्ट हो गया है, इसलिए मैं इसकी दंड आज्ञा इस पर ले आया, और देश ने इसके निवासियों को निकाल फेंका। किंतु तुम मेरी विधियों और नियमों का पालन करना, और ये घृणित कार्य ना करना, ना तो स्वदेशी और ना ही तुम्हारे बीच रह रहे विदेशी जो तुम्हारे बीच में रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने इस देश के निवासियों ने ये समस्त घृणित कार्य किए हैं, और देश भ्रष्ट हो गया है। ऐसा ना हो कि तुम इसे भ्रष्ट कर दो और यह तुम्हें निकाल फेंके, जिस प्रकार इसने उस जनता को निकाल फेंका था जो तुम्हारे सामने था। यदि कोई इन घृणित कार्यों में से कोई भी कार्य करता है, तो उन्हें जो ऐसा करते हैं प्रजा से बाहर कर दिया जाए। अब तुम मेरे आदेश का पालन करो कि तुम किसी भी घिनौनी रीति का पालन ना करो जिनका पालन तुम्हारे सामने होता रहा था, कि तुम उनसे स्वयं को अशुद्ध ना कर बैठो। मैं ही वह यहावे तुम्हारा परमेश्वर हूं। लेवी व्यवस्था अध्याय 19। पवित्रता एवं न्याय के विषय में। यहावे ने मोशे को यह आदेश दिया, इज़राइल वंशजों की पूरी सभा को यह आदेश दो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहावे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। तुम में से हर एक अपने माता पिता का सम्मान करे और मेरे शब्बातों का पालन करे। मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मूर्तों की ओर ना फिरना और ना स्वयं के लिए धातु के देवता गढ़ना। मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जब तुम यहावे को मेल बलि भेंट करो तो इसे इस रीति से भेंट करो कि वह स्वीकार किए जाओ। जिस दिन तुम इसे भेंट करो उसी दिन तथा उसके अगले दिन इसको खाया जाए, किंतु जो तीसरे दिन तक बचा हुआ है उसको आग में जला दिया जाए। पर तीसरे दिन तक बचा हुआ मांस को खाया जाना स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अशुद्ध है। ऐसा हर एक व्यक्ति जो इसको खाता है वह अपने अधर्म का भार स्वयं उठाएगा, क्योंकि उसने यहावे की पवित्र वस्तु को अशुद्ध किया है। तब उस व्यक्ति को प्रजा से बाहर निकाल दिया जाए। जब तुम अपने देश में पहुंचने के बाद उपज इकट्ठा करोगे तो तुम अपने खेतों के कोने कोने तक की उपज इकट्ठा ना कर लेना, ना ही उपज की सिल्ला, ना ही अपने अंगूर की बारी से सारे अंगूर इकट्ठा कर लेना, और ना ही अपनी अंगूर की बारी के नीचे गिरे हुए फलों को इकट्ठा करना। तुम उन्हें दरिद्रों तथा विदेशियों के लिए छोड़ देना। मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम चोरी ना करना, ना ही धोखा देना, ना एक दूसरे से झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ ना लेना और इस प्रकार अपने परमेश्वर का नाम अशुद्ध ना करना। मैं ही यहावे हूँ। तुम अपने पड़ोसी को ना लूटना, ना ही उसकी किसी वस्तु को जबरदस्ती छीनना। भाड़े पर लाए गए किसी मजदूर की मजदूरी तुम्हारे पास रात से सुबह तक रखी ना रह जाए। तुम किसी बहिरे को शाप ना देना, ना ही अंधे के सामने ठोकर का पत्थर रखना, परंतु अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। मैं ही यहावे हूँ। तुम निर्णय देने में अन्याय ना करना, तुम दरिद्र के प्रति भेदभाव ना करना, ना ही ऊंचे लोगों का सम्मान तुम्हारे निर्णय को प्रभावित करने पाए, परंतु तुम अपने पड़ोसी का सही प्रकार से न्याय करना। तुम अपने लोगों के बीच निंदा करते ना फिरना। यदि तुम्हारे पड़ोसी का जीवन खतरे में हो तो तुम शांत ना बने रहना। मैं ही यहावे हूँ। अपने भाई से घृणा ना करना। तुम अपने पड़ोसी को फटकार अवश्य लगाना, ऐसा ना हो कि उसके पाप के दोष तुम पर आ जाए। बदला ना लेना और ना ही अपने लोगों की संतान से कोई बैर रखना, परंतु तुम अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करना जैसा प्रेम तुम्हें स्वयं से है। मैं ही यहावे हूँ। मेरी विधियों का पालन करना। तुम अपने पशुओं में दो भिन्न प्रकार के पशुओं का मेल ना कराना। तुम अपने खेत में दो भिन्न प्रकार के बीज ना बोना, ना ही वह वस्त्र पहनना जिसमें दो प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति उस स्त्री से जो दासी है और किसी अन्य की मंगेतर है तथा किसी भी प्रकार से उसका दाम नहीं चुकाया गया, ना ही उसे स्वतंत्र किया गया है, सहवास कर लेता है, तब उन्हें दंड तो दिया जाएगा किंतु मृत्यु दंड नहीं, क्योंकि वह स्त्री उस समय दासत्व में थी। वह व्यक्ति मिलन वाले तंबू के द्वार पर दोष बलि के लिए एक मेढ़ा यहावे को भेंट करे। फिर पुरोहित दोष बलि के उस मेढ़े के साथ यहावे के सामने उस व्यक्ति तथा उसके द्वारा किए गए पाप के लिए प्रायश्चित पूरा करे, तब उसके द्वारा किया गया पाप क्षमा कर दिया जाएगा। जब तुम उस देश में प्रवेश करके सभी प्रकार के खाने वाले फलों के वृक्षों को उगाओगे तो याद रहे कि इन बोए हुए वृक्षों के फल तुम्हारे लिए वर्जित होंगे। पहले 3 वर्षों के लिए ये फल तुम्हारे लिए वर्जित होंगे, इनको ना खाया जाए, किंतु 4थे वर्ष इसके सारे फल यहावे की स्तुति में भेंट पवित्र फल होंगे। पांचवें वर्ष तुम इनको खा सकते हो कि यह तुम्हें बहुत मात्रा में फल दे सके। यहावे तुम्हारा परमेश्वर मैं ही हूं। तुम किसी भी वस्तु को लहू के साथ ना खाना, ना ही शकुन विचारना अथवा जादू टोना करना। तुम अपनी कनपटी के बाल ना कतरना और ना अपनी दाढ़ी को किनारों से काटना। मृतकों के लिए तुम अपनी देह में कोई चीरा ना लगवाना, ना ही कोई चिन्ह गुदवाना। मैं ही यहावे हूं। अपनी पुत्री को वैश्या बनाकर उसे भ्रष्ट ना करना। ऐसा ना हो कि देश में वैश्यावृत्ति भर जाए और यह कामुकता से परिपूर्ण हो जाए। तुम मेरे शब्बातों का पालन करो और मेरे पवित्र स्थान का सम्मान। मैं ही यहावे हूं। तुम ओझाओं और तांत्रिकों की ओर ना फिरना। उनकी खोज करने के द्वारा तुम स्वयं को दूषित ना कर लेना। मैं ही यहावे तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम बूढ़े व्यक्ति के सामने खड़े हुआ करो और बूढ़ों की उपस्थिति का सम्मान करना तथा अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं ही यहावे हूं। जब कोई अपरिचित तुम्हारे बीच तुम्हारे देश में रहता है तो तुम उसके साथ अन्याय ना करना। जो अपरिचित तुम्हारे बीच में रह रहा है, तुम्हारे लिए वह तुम्हारे मध्य एक स्वदेशी के समान हो और तुम उससे वैसा ही प्रेम करना जैसा तुम स्वयं से करते हो, क्योंकि मिस्र देश में तुम परदेशी थे। मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम न्याय करने, नापतोल तथा मात्रा में अन्याय ना करना। तुम्हारी तुला, बाट, किलो और लीटर यथार्थ हो। मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकालकर लाया हूं। फिर तुम मेरी विधियों और सभी नियमों का पालन करना और उनको मानते रहना। मैं ही यहावे हूं। लेवी व्यवस्था अध्याय 20। मानव बलि तथा अनैतिकताओं के विषय। यहावे ने मोशे को यह आज्ञा दी, इज़राइल वंशजों को तुम ये आदेश भी देना। इज़राइल वंशजों में से कोई भी व्यक्ति अथवा इज़राइल में रह रहे परदेशियों में से कोई भी जो अपनी संतान में से किसी को भी मोलेख को भेंट करता है, निश्चयतः उसका वध कर दिया जाए। उस देश के निवासी उस पर पथराव करें। मैं भी उस व्यक्ति से मुंह फेर लूंगा और उसे प्रजा से निकाल बाहर कर दूंगा, क्योंकि उसने अपनी संतानों में से कुछ को मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध और मेरे पवित्र नाम को भ्रष्ट करने के लिए मोलेख के लिए भेंट किया है। यदि उस देश के निवासी उस व्यक्ति को अनदेखा कर दे जिसने अपनी संतान में से किसी को मोलेख को भेंट किया है और उसका वध ना करे, तो मैं स्वयं उस व्यक्ति एवं उसके परिवार से मुंह फेर लूंगा और उन्हें प्रजा से निकाल बाहर कर दूंगा। उस व्यक्ति को और उन सभी लोगों को जो मोलेख के प्रति श्रद्धा दिखा करके मेरे साथ विश्वास को तोड़ने में उस व्यक्ति का साथ देते हैं। जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है जो तांत्रिकों और ओझाओं की ओर फिर गया हो, मेरे साथ विश्वास तोड़ने में उनका साथ देता है, मैं उस व्यक्ति से भी मुंह फेर लूंगा और उसे मेरी प्रजा से अलग कर दूंगा। इसलिए तुम स्वयं को शुद्ध करो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम मेरी विधियों का पालन करते हुए उनको मानना। मैं ही वह यहावे हूं जो तुम्हें शुद्ध करता हूं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पिता अथवा अपनी माता को शाप देता है, तो निश्चय ही उसका वध कर दिया जाए। उसने अपने पिता और माता को शाप दिया है, उसके लहू का दोष उसी पर होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी से व्यभिचार करता है, तो जिसने अपने मित्र की पत्नी के साथ व्यभिचार किया है, निश्चय ही उस व्यभिचारी और उस व्यभिचारिणी दोनों का वध किए जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता की पत्नी से सहवास कर लेता है, तो उसने अपने पिता का अपमान किया है। इसलिए अवश्य है कि उन दोनों का वध कर दिया जाए। उन दोनों के लहू का दोष उन्हीं पर होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी बहू से सहवास करता है, तो निश्चय ही उन दोनों का वध कर दिया जाए। उन्होंने पारिवारिक व्यभिचार किया है, उनके लहू का दोष उन्हीं पर होगा। यदि कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ वैसा ही सहवास करता है जैसा किसी स्त्री के साथ, तो उन्होंने एक घृणित काम किया है, निश्चित ही उन दोनों का वध कर दिया जाए, उनके लहू का दोष उन्हीं पर होगा। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री एवं उसकी माता से विवाह करता है तो यह महापाप है। उसके एवं उन दोनों स्त्रियों को आग में जला दिया जाए कि तुम्हारे बीच कोई महापाप ना रह जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु से सहवास करता है तो निश्चित ही उस व्यक्ति का वध कर दिया जाए और निश्चित ही उस पशु का भी। यदि कोई स्त्री किसी पशु से सहवास करती है तो तुम उस स्त्री एवं पशु का वध कर देना, निश्चित ही उनका वध कर दिया जाए, उनके लहू का दोष उन्हीं पर होगा। यदि कोई अपनी बहन से अर्थात अपने पिता की पुत्री अथवा अपनी सौतेली माता की पुत्री से विवाह करता है जिसके कारण वह उस कन्या को बिना वस्त्र के देख लेता है तथा वह कन्या उसको बिना वस्त्र के देख लेती है तो यह लज्जाजनक कार्य है और उन्हें लोगों के बीच में से निकाल दिया जाए। वह व्यक्ति जिसने अपनी बहन की लज्जा को उघाड़ा है अपने अधर्म का बोझ स्वयं उठाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी ऋतुमती से संभोग कर उसकी लज्जा को उघाड़ता है, उसने उसके ऋतुस्राव के स्रोत को उघाड़ा है और उस स्त्री ने अपने रक्त प्रवाह को उघाड़ा है, उन दोनों को लोगों के बीच में से निकाल दिया जाए। तुम अपनी मौसी अथवा अपनी फूफी की लज्जा को ना उघाड़ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने कुटुंबियों को नग्न किया है, वे अपने अधर्म का बोझ स्वयं उठाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी चाची से संभोग करता है तो उसने अपने चाचा की लज्जा को उघाड़ा है, वे अपने पाप का बोझ स्वयं उठाएंगे, उनकी मृत्यु निसंतान होगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी भाभी से विवाह करता है, यह घिनौना काम है, उसने अपने भाई की लज्जा को उघाड़ा है, वे निसंतान ही रह जाएंगे। तुम मेरी सभी विधियों और मेरे सभी नियमों का पालन करते हुए उनका अनुसरण करना कि वह देश तुम्हें निकाल ना फेंके जिसमें मैं तुम्हें बस जाने के लिए ले जा रहा हूं। इसके अलावा तुम उन जनताओं की रीति रस्मों पर मत चलना जिन्हें मैं तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये सब कुकर्म किए, इसलिए मैंने उनसे घृणा की है। अतः एव, मैंने तुम्हें आदेश दिया, तुम्हें उनके देश पर अधिकार कर लेना है। मैं स्वयं इस देश को तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा जहां दूध और शहद की बहुतायत है। मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूं जिसने तुम्हें उन लोगों से अलग किया है। तुम्हें शुद्ध एवं अशुद्ध पशुओं, शुद्ध एवं अशुद्ध पक्षियों के बीच भेद स्पष्ट रखना होगा। किसी पशु पक्षी अथवा कोई भी प्राणी जो भूमि पर रेंगता है, जिसे मैंने उसकी अशुद्धता के कारण तुमसे अलग किया है, उसके कारण तुम स्वयं को अशुद्ध ना करना। इस प्रकार जरूरी है कि तुम मेरे प्रति पवित्र रहो, क्योंकि मैं ही यहावे हूं जो पवित्र हूं। मैंने तुम्हें मेरी प्रजा होने के लिए लोगों से अलग किया है। यदि कोई तांत्रिक एवं ओझा है तो निश्चित ही उसका वध कर दिया जाए, उन पर पथराव किया जाए, उनके लहू का दोष उन्हीं पर है। लेवी व्यवस्था अध्याय 21। पुरोहितों के लिए नियम। यहावे ने मोशे को यह आज्ञा दी, अहरोन वंशी पुरोहितों को यह आज्ञा दो, कोई पुरोहित अपने लोगों के बीच किसी मृतक के लिए स्वयं को अशुद्ध ना करे, केवल उसके निकटतम संबंधियों के अर्थात माता पिता, उसके पुत्र पुत्री, भाई तथा उसकी कुआरी बहन जो उस पर आश्रित है, क्योंकि अब तक उसके कोई पति हुआ ही नहीं। इनके लिए वह पुरोहित स्वयं को अशुद्ध कर सकता है, घर का मालिक होने के कारण वह स्वयं को अशुद्ध ना करे। हाँ, इस प्रकार वह स्वयं को भ्रष्ट ना करे। वे अपना सिर ना मुंडवाए, ना ही अपनी दाढ़ी के किनारे कतरे, ना ही अपनी देह में चीरा लगाए। वे अपने परमेश्वर के प्रति पवित्र रहे और अपने परमेश्वर के नाम को अशुद्ध ना करे, क्योंकि वे आग के बीच से यहावे अपने परमेश्वर का भोजन अर्थात बलि भेंट कर रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि वे पवित्र रहे। वे वेश्यावृत्ति से अशुद्ध स्त्री से विवाह ना करें, ना ही उस स्त्री से जिसका उसके पति से तलाक हो गया है, क्योंकि पुरोहित उसके परमेश्वर के लिए पवित्र है। तुम उसे पवित्र करना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर को भोजन भेंट करता है। वह तुम्हारे लिए पवित्र रहे, क्योंकि मैं यहावे जो तुम्हें पवित्र करता हूँ, पवित्र हूँ। पुरोहित की कोई पुत्री यदि स्वयं को वैश्यवृत्ति से अशुद्ध करती है तो वह अपने पिता को अशुद्ध करती है, उसे आग में जला दिया जाए। वह पुरोहित जो अपने भाइयों में प्रधान है, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल उंडेला गया है, जिसे पुरोहित वस्त्र धारण करने के लिए पवित्र किया गया है, वह पुरोहित अपने सिर को ना उघाड़े, ना ही अपने वस्त्र फाड़े, ना ही वह किसी शव के निकट जाए, ना ही स्वयं को अपने पिता और अपनी माता के लिए अशुद्ध करे। वह पवित्र स्थान से बाहर ना जाए और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र करे, क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक का तेल उस पर है। मैं ही यहावे हूँ। वह कुआरी कन्या से ही विवाह करे, वह इनमें किसी से विवाह ना करे। एक विधवा अथवा जिसका तलाक हो गया हो, अथवा उस कन्या से जो वैश्यवृत्ति द्वारा अशुद्ध हो गई हो, परंतु वह अपने लोगों में से ही किसी कुआरी से विवाह करे, कि वह अपने लोगों में अपनी संतानों को अशुद्ध ना कर दे, क्योंकि मैं ही यहावे हूँ जो उसे पवित्र करता हूँ। इसके बाद यहावे ने मोशे को आज्ञा दी, अहरोन को यह संदेश दो, तुम्हारी संतानों में से उनकी पीढ़ियों तक कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई अंग खराब पाया जाता है, वह अपने परमेश्वर को भोजन भेंट करने का प्रयास ना करे। हाँ, इनमें से कोई भी व्यक्ति यह प्रयास ना करे, अंधा, लंगड़ा, चपटी नाक वाला या अधिक अंग वाला हो, जिसका पांव अथवा बाह की कोई हड्डी टूटी हो, कुबड़ा, बोना, जिसकी आंख में कोई खराबी हो, जो खुजली से पीड़ित हो अथवा उसकी त्वचा पर चकते हो, तथा जिसके अंडकोश कुचले हुए हो। अहरोन की संतानों में से कोई व्यक्ति जिसमें कोई खराबी हो, वह आग में यहावे को बलि भेंट करने का प्रयास ना करे, इसलिए कि उस व्यक्ति में वह खराबी है, वह अपने परमेश्वर के भोजन को भेंट करने का प्रयास ना करे। वह परम पवित्र तथा पवित्र स्थान दोनों ही स्थानों के अपने परमेश्वर के भोजन को खा तो सकता है, किंतु वह पर्दे के भीतर ना जाए और ना ही वेदी के निकट, क्योंकि उसके अंगों में खराबी है और इसके द्वारा वह मेरे पवित्र स्थानों को अशुद्ध ना कर बैठे, क्योंकि मैं ही यहावे हूँ जो उन्हें पवित्र करता हूँ। उनके पुत्रों और सारे इसराइल के घराने को ये आज्ञाएं दी। लेवी व्यवस्था अध्याय 22। यहावे ने मोशे को ये आदेश दिए, अहरोन और उसके पुत्रों को इसराइल के घराने के उन उपहारों के प्रति जो उपहार वे मुझे भेंट करते हैं, सावधान रहने को बता दो कि इसके द्वारा वे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना कर दें। मैं ही यहावे हूँ। उन्हें यह आज्ञा दो, तुम्हारी सारी पीढ़ियों तक यदि तुम्हारे बीच में से कोई भी व्यक्ति जब वह अशुद्ध है तब उन भेंटों के समीप आ जाता है जो इसराइल के घराने के द्वारा मुझे भेंट किए गए थे, तो उस व्यक्ति को मेरे सामने से अलग कर दिया जाए। मैं ही वह यहावे हूँ। अहरोन के घराने में से कोई भी व्यक्ति जो कोढ़ी है अथवा जिसे किसी प्रकार का स्राव हो रहा हो, तब तक मेरी पवित्र भेंटों में से कुछ ना खाए, जब तक वह शुद्ध ना हो जाए। और यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु को छू लेता है जो किसी शव को छूने के द्वारा अशुद्ध हो गई है, अथवा यदि किसी व्यक्ति का वीर्य स्खलन हुआ है, अथवा यदि कोई व्यक्ति किसी अशुद्ध वस्तु को छू लेता है और उसके द्वारा वह अशुद्ध हो जाता है, अथवा वह किसी अन्य अशुद्ध व्यक्ति के द्वारा अशुद्ध हो जाता है, तो चाहे उसकी कैसी भी अशुद्धता हो, तो वह व्यक्ति जो ऐसी किसी भी वस्तु को छू लेता है, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा और स्नान करने तक वह पवित्र भेंटों में से किसी वस्तु को ना खाए, किंतु सूर्य अस्त होने पर वह व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद वह पवित्र भेंटों में से खा सकता है, क्योंकि यह उसका भोजन है। वह उस मरे हुए पशु के मांस को ना खाए जिसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई हो, अथवा जिसे किसी जंगली जानवर ने फाड़ डाला हो। ऐसा करके वह स्वयं को अशुद्ध ना बनाए, क्योंकि मैं ही यहावे हूँ। वे मेरे इस नियम का पालन करे कि उन्हें पाप का भार ना उठाना पड़े। और मेरे नियम को अपवित्र करने के द्वारा उनकी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि मैं ही यहावे हूँ जो उन्हें पवित्र करता हूँ। कोई भी जो पुरोहित के परिवार के बाहर का हो, किसी पवित्र भेंट को ना खाए। किसी पुरोहित के साथ रह रहा कोई पराय कुल का रहवासी अथवा किराए पर लिया गया कोई मजदूर पवित्र भेंट में से ना खाए। किंतु यदि कोई पुरोहित धन देकर किसी दास को खरीद लेता है, तो वह दास पवित्र भेंट में से खा सकता है, और वे सब भी जिनका जन्म उसके परिवार में हुआ है उसके भोजन से खा सकते हैं। यदि किसी पुरोहित की पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो पुरोहित ना हो, तो वह कन्या उन चढ़ाई हुई भेंटों में से ना खाए। किंतु यदि किसी पुरोहित की पुत्री विधवा हो जाए अथवा उसका तलाक हो जाए और वह युवावस्था में ही निसंतान ही अपने पिता के घर लौट आए, तो वह अपने पिता के भोजन में से खा सकती है। किंतु कोई व्यक्ति जो पुरोहित ना हो, वह इसमें से ना खाए। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में पवित्र भेंटों में से खा ले, तो वह इसका 5 गुना मिलाकर उस पवित्र भेंट को पुरोहित को दे दे। वे इसराइल की घराने द्वारा यहावे को चढ़ाई हुई पवित्र भेंटों को अपवित्र ना करें, और इस प्रकार उनकी पवित्र भेंटों को खाने के द्वारा दंड उठाने का कारण ना बने, क्योंकि मैं ही यहावे हूँ जो उन्हें पवित्र करता हूँ। ग्रहण योग्य बलियां। यहावे ने मोशे को आज्ञा दी, अहरोन उसके पुत्रों और सारे इसराइल के घराने को यह आज्ञा दो, इसराइल के घराने में से कोई व्यक्ति अथवा इसराइल में कोई परदेशी जब बलि चढ़ाए, चाहे यह बलि किसी शपथ के लिए हो अथवा उनकी स्वेच्छा बलि हो, वे यहावे को वह होम बलि के रूप में चढ़ाए। वह तुम्हारे लिए ग्रहण योग्य हो सके तो जरूरी है कि यह बलि निर्दोष नर पशु की हो, चाहे बछड़ा अथवा मेढ़ा अथवा बकरा। उस पशु को ना चढ़ाया जाए जिसमें कोई खराबी हो, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में यह यहावे द्वारा ग्रहण नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से किसी विशेष शपथ को पूरा करने अथवा स्वेच्छा बलि के लिए यहावे को मेल बलि चढ़ाता है, तो जरूरी है कि ग्रहण करने के लिए यह निर्दोष हो। ध्यान रहे कि इसमें कोई खराबी ना हो। ऐसे पशुओं को जो अंधे हो, जिनकी हड्डी टूटी हो, जो विकलांग हो, जिसके घाव से स्राव हो रहा हो, जिन्हें चकते हो गए हो अथवा खाज खुजली वाले हो, यहावे को ना चढ़ाना और ना ही उन्हें वेदी पर अग्नि बलि स्वरूप यहावे के लिए चढ़ाना। तुम किसी ऐसे बछड़े अथवा मेमने को स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो जिसका कोई अंग बड़ा अथवा छोटा हो गया हो, किंतु किसी शपथ के लिए यह ग्रहण नहीं होगा। किसी भी ऐसे पशु को जिसके अंडकोश चोटील, कुचले, फटे अथवा कटे हो, यहावे को ना चढ़ाना और ना ही अपने देश में उनकी बलि देना, और ना ही किसी विदेशी से इसे परमेश्वर के भोजन के रूप में चढ़ाने के लिए ग्रहण करना, क्योंकि उनमें तो उनका बिगड़ा आकार है ही, उनमें दोष है, वे तुम्हारे पक्ष में ग्रहण नहीं होंगे। यहावे ने मोशे को आज्ञा दी, जब किसी बछड़े, भेड़ अथवा बकरी का जन्म हो, यह 7 दिन तक अपनी माता के साथ में रहे, और 8वें दिन के बाद से यह यहावे के लिए अग्नि बलि के रूप में ग्रहण हो जाएगा। किंतु चाहे यह बछड़ा हो अथवा भेड़, तुम माता तथा उसके बच्चे दोनों का एक ही दिन में वध ना करना। जब तुम यहावे को आभार बलि चढ़ाओ, तो तुम इसे इस प्रकार भेंट करो कि यह यहावे को ग्रहण हो। इसको उसी दिन खा लिया जाए, तुम सुबह तक इसमें से कुछ भी बचाकर ना रखना। मैं ही यहावे हूँ, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन कर उनका अनुसरण करना। मैं ही यहावे हूँ, तुम मेरे पवित्र नाम को अशुद्ध ना करना। मैं इसराइल के घराने में पवित्र किया जाऊंगा। मैं ही यहावे हूँ जो तुम्हें पवित्र करता हूँ। तुम्हें मिस्र से निकालकर लाया हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊँ। मैं ही यहावे हूँ।
लेवी व्यवस्था अध्याय 23। इसराइल के लिए ठहराए गए उत्सव।
यहावे ने मोशे को दोबारा आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को यह आज्ञा दो, ये यहावे के वे ठहराए हुए उत्सव है जिन्हें तुम पवित्र समारोह घोषित करोगे। मेरे द्वारा निर्धारित उत्सव ये है, शब्बात विश्राम का दिन। 6 दिन तो कार्य किया जा सकता है, किंतु 7वां दिन पूर्ण विश्राम का दिन शब्बात है, एक पवित्र समारोह। तुम कोई कार्य ना करना, यह तुम्हारे सारे घराने में यहावे के लिए एक शब्बात होगा। फसह और अखमीरी रोटी का उत्सव। ये यहावे के ठहराए गए उत्सव है, पवित्र समारोह, जिनकी घोषणा तुम्हें उनके तय किए गए समय पर करनी है। यहावे के फसह का निर्धारित समय पहले माह के 14वें दिन संध्या समय है। उसी माह के 15वें दिन यहावे के लिए खमीर रहित रोटी का उत्सव होगा, 7 दिन तक खमीर रहित रोटी ही खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा होगी तथा तुम किसी भी प्रकार की मेहनत ना करना, किंतु 7ों दिन तुम यहावे को अग्नि बलि चढ़ाना। 7वें दिन पवित्र सभा होगी, इस दिन तुम किसी भी प्रकार की मेहनत ना करना। प्रथम फल का उत्सव। यहावे ने मोशे को आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को यह आज्ञा दो, जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देने वाला हूं तथा उसकी उपज इकट्ठी करो, तो तुम अपनी पहली उपज की पूलियों को पुरोहित के सामने लेकर आना। पुरोहित इन पूलियों को यहावे के सामने हिलाने की बलि के रूप में चढ़ाएगी, यह तुम्हारे लिए ग्रहण किया जाए। पुरोहित इसे शब्बात के अगले दिन हिलाए। उसी दिन जिस दिन पूलियों को हिलाने की मुद्रा बलि के रूप में चढ़ाया जाए, 1 वर्षीय नर मेमने की होमबलि यहावे को चढ़ाई जाए। इसके साथ अनबली में तेल और 3 किलो मैदा मिलाकर यहावे के लिए सुखदायी सुगंध के रूप में आग में चढ़ाया जाए। इसके अलावा उसके साथ पेय बलि के लिए 1 लीटर दाखरस भी। उस दिन तक तथा जब तक तुम्हारे परमेश्वर के लिए निर्धारित बलि ना चढ़ा दी जाए, तब तक ना तो रोटी और ना ही भुने अथवा कच्चे अन्न को खाया जाए। यह तुम्हारे सारे घराने में तुम्हारी सारी पीढ़ियों के लिए सदा सर्वदा के लिए एक विधि है। सप्ताहों का उत्सव। तुम शब्बात के अगले दिन से जब लहराने की बलि के रूप में चढ़ाने के लिए पूलियां लाई जाए, गिनती करना, ये पूरे 7 शब्बात होंगे। 7वें शब्बात के अगले दिन से 50 दिनों की गिनती करना, फिर यहावे को नया अनबलि चढ़ाया जाए। तुम अपने निवास स्थानों से लहराने की बलि के रूप में चढ़ाने के लिए 2 किलो मैदे की रोटियां लाना, जो यहावे को प्रथम फल के रूप में चढ़ाने के लिए खमीर के साथ बनाई जाए। रोटियों के साथ साथ 7 1-1 वर्षीय निर्दोष मेमने, पशुओं से 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना, ये सब यहावे के लिए होम बलि है, जो उनकी अन्न बलि तथा उनकी पेय बलि सहित अग्नि बलि द्वारा यहावे को सुखद सुगंध होंगे। पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1-1 वर्षीय 2 मेमने भी अर्पित करना। पुरोहित इन्हें लहराने की बलि के समान बलि चढ़ाने के लिए पहली उपज की रोटियों और मेमनों के साथ यहावे के सामने लहराए। ये यहावे के लिए पवित्र तथा पुरोहित का ठहराया हुआ भाग है। उसी दिन तुम एक पवित्र समारोह भी मनाने की घोषणा करना। उस दिन किसी भी प्रकार का परिश्रम ना करना। यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी सारी पीढ़ियों के लिए सदा सर्वदा के लिए एक विधि है। जब तुम अपने देश में उपज इकट्ठी करो, तो तुम अपने खेतों से कोने कोने तक की उपज इकट्ठा ना करना, ना ही अपनी उपज की सिल्ला इकट्ठी करना। तुम उन्हें दीनों तथा विदेशियों के लिए छोड़ देना। मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुरी का उत्सव। यहावे ने मोशे को दोबारा आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को यह आज्ञा दो, 7वें माह का 1वां दिन शब्बात का विश्राम दिन होगा। तुरी फूकने के द्वारा इसका स्मरण दिलाना। यह एक पवित्र समारोह है। इस दिन तुम किसी प्रकार का परिश्रम ना करना और यहावे को अग्नि बलि चढ़ाना। प्रायश्चित दिवस। यहावे ने मोशे को निर्देश दिया, इस माह का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन होगा। यह तुम्हारे लिए पवित्र समारोह होगा, और इस दिन अपने हृदय को नम्र बनाकर यहावे को अग्नि बलि चढ़ाई जाए। इस दिन तुम किसी भी प्रकार का परिश्रम ना करना, क्योंकि यह प्रायश्चित का दिन है कि यहावे तुम्हारे परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित पूरा किया जाए। जो व्यक्ति इस दिन स्वयं को नम्र नहीं करता, उसे उसके परिवार से बाहर निकाल दिया जाए। जो व्यक्ति इस दिन परिश्रम करता है, मैं उस व्यक्ति को उसके परिवार के बीच से नाश कर दूंगा। तुम इस दिन किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करोगे। यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी सारी पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए एक विधि है। यह तुम्हारे लिए संपूर्ण विश्राम का शब्बात है। इस दिन तुम अपने हृदय को नम्र करोगे, माह के नौवे दिन शाम से शाम तक शब्बात का पालन करोगे। झोपड़ी का उत्सव। यहावे ने मोशे को दोबारा आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को यह आज्ञा दो, सातवें माह के पंद्रहवें दिन से यहावे के लिए सात दिनों के लिए झोपड़ी का उत्सव होगा। प्रथम दिवस पवित्र समारोह होगा। तुम इस दिन किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करोगे। तुम इन सातों दिन यहावे को अग्नि बलि चढ़ाना। आठवें दिन तुम पवित्र समारोह का आयोजन करोगे और इस दिन यहावे को एक अग्नि बलि चढ़ाओगे। यह एक औपचारिक आयोजन होगा। तुम किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं करोगे। ये यहावे के वे नियत उत्सव है जिन्हें तुम यहावे के लिए अग्नि बलियां प्रस्तुत करने के लिए पवित्र सभा घोषित करना। होम बलियां, अन्न बलियां, अन्य बलियां तथा पेय बलियां हर एक अपने अपने नियत दिन पर अर्पित करने के लिए है। ये दिन यहावे के शब्बातों के अलावा तथा ये बलियां तुम्हारे उन भेंटों, शपथ और स्वेच्छा बलि के अतिरिक्त है जो तुम यहावे के लिए चढ़ाते हो। सातवें माह के पंद्रहवें दिन जब तुम देश की उपज इकट्ठी कर चुकोगे, तब सात दिनों के लिए यहावे के लिए उत्सव मनाना। इसमें प्रथम दिन तथा आठवां दिन शब्बात होगा। प्रथम दिन तुम स्वयं अपने लिए हरे भरे वृक्षों के फल, खजूर वृक्ष की शाखाएं, घने वृक्षों की शाखा और नदी के किनारे के मजनू वृक्ष लेकर सात दिन तक यहावे तुम्हारे परमेश्वर के सामने आनंद करना। तुम हर साल यहावे के लिए सात दिन यह उत्सव मनाओगे। यह उत्सव सातवें माह में मनाया जाए। यह तुम्हारी सारी पीढ़ियों में हमेशा के लिए एक विधि है। तुम सात दिन झोपड़ियों में रहोगे। इज़राइल के सारे मूल निवासी झोपड़ियों में रहेंगे ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को यह एहसास हो जाए कि जब मैंने इज़राइल के घराने को मिस्र से निकाला था, मैंने उन्हें झोपड़ियों में टिकाया था। मैं ही यहावे तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इस प्रकार मोशे ने इज़राइल के घराने के सामने यहावे के निर्धारित उत्सवों का विवरण दिया। लेवी व्यवस्था अध्याय 24। पवित्र स्थान की रोटी और दीपक। फिर यहावे ने मोशे को यह आज्ञा दी, इज़राइलियों को कहना कि वे दिए के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल लाए, जिससे दिया हमेशा जलता रहे। अहरोन इसे शाम से सुबह तक नियमित रूप से मिलन वाले तंबू में साक्षी पर्दे के बाहर यहावे के सामने सजाकर रखा करे। यह तुम्हारी सारी पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए एक विधि है। अहरोन दीपकों को यहावे के सामने कुंदन के दीपदान पर सजाकर नियमित रूप से रखे। इसके बाद तुम मैदा लेकर इससे 12 बाटियां बनाना। हर एक बाटी 2 किलो मैदे से बनाई जाए। तुम इन्हें यहावे के सामने कुंदन की मेज पर क्रमानुसार 2 पंक्तियों में रखना, हर एक पंक्ति में 6-6। हर एक पंक्ति पर शुद्ध लोबान रखना कि यह बाटी के लिए स्मरण दिलाने वाली यहावे के लिए अग्नि बलि हो जाए। वह हर शब्बात इसे यहावे के सामने सुव्यवस्थित रीति से नियमित रूप से रखे। इज़राइल के घराने के लिए यह एक हमेशा की विधि है। यह भोजन अहरोन तथा उनके पुत्रों के लिए होगा और वे इसको पवित्र स्थान में ही खाएंगे, क्योंकि यह यहावे की अग्नि बलियों में से उनके लिए परम पवित्र है, उनका सदैव का भाग है। परमेश्वर निंदा की योग्य सजा। तभी अचानक यह हुआ कि एक इज़राइली स्त्री का पुत्र, जिसका पिता एक मिस्री था, इज़राइल के घराने के बीच जा पहुंचा और छावनी में ही उस इज़राइली स्त्री के पुत्र और एक इज़राइली पुरुष के बीच मारपीट हो गई। उस इज़राइली स्त्री के पुत्र ने परमेश्वर की निंदा करके परमेश्वर को शाप दिया। तब उसे मोशे के सामने लाया गया। उस युवक की माता का नाम शिलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिबरी की पुत्री थी। उन्होंने उसे हवालात में रख लिया कि उसके सामने यहावे की आज्ञा स्पष्ट की जा सके। इसके बाद यहावे ने मोशे को आज्ञा दी, जिसने परमेश्वर को शाप दिया है उसे छावनी से बाहर लाया जाए, और जिन्होंने उसे ऐसा कहते हुए सुना है वे उसके सिर पर अपने हाथ रखें। इसके बाद सारी सभा उसका पथराव करें। इज़राइल के घराने को यह आज्ञा दी जाए, जो अपने परमेश्वर को शाप देता है वह स्वयं अपने पाप का बोझ उठाएगा। उसे जो यहावे के नाम की निंदा करता है निश्चित ही मृत्यु दंड दिया जाए। निसंदेह सारी सभा उसका पथराव करे, चाहे कोई परदेशी हो या देशी। इस प्रकार जब कोई यहावे के नाम की निंदा करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया ही जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे मनुष्य की हत्या कर देता है तो निश्चित ही उसे मृत्यु दंड दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी पशु की हत्या कर देता है तो वह इसके नुकसान की भरपाई करे, प्राण के बदले प्राण। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को चोट पहुंचाता है तो जैसा उसने किया है उसके साथ ठीक वैसा ही किया जाए। अंग भंग के बदले अंग भंग, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसे उसने एक व्यक्ति को चोट पहुंचाई है उसे भी ठीक वैसे ही चोट पहुंचाई जाए। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसने किसी पशु की हत्या की थी वह इसके नुकसान की भरपाई करेगा, किंतु उसे जो किसी मनुष्य की हत्या कर देता है मृत्यु दंड दिया जाए। तुम्हारे बीच एक ही नियम हो, परदेशी तथा देशी दोनों के लिए एक, क्योंकि मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसके बाद मोशे ने इज़राइल के घराने को आदेश दिया और वे उस व्यक्ति को छावनी के बाहर ले आए जिसने परमेश्वर को शाप दिया था, उसका पथराव किया। इस प्रकार इज़राइल के घराने ने वैसा ही किया, ठीक जैसी आज्ञा यहावे ने मोशे को दी थी। लेवी व्यवस्था अध्याय 25। विश्राम का सातवां वर्ष। यहावे ने मोशे को सिनाई पर्वत पर आज्ञा दी, इज़राइल के घराने को यह आज्ञा दो, जब तुम उस देश में प्रवेश करोगे जो मैं तुम्हें दूंगा, तब यहावे के लिए उस देश में एक शब्बात होगा। तुम 6 वर्ष तो अपने खेत में बीज बोओगे और अंगूर की बारी की छटाई तथा उसकी उपज इकट्ठा करोगे, किंतु 7वें वर्ष में भूमि के लिए शब्बात विश्राम होगा। यहावे के लिए शब्बात ना तो तुम अपने खेतों में बीज बोना और ना ही अपनी अंगूर की बारी की छटाई करना। उपज इकट्ठा करने के बाद अपने आप उगी हुई उपज इकट्ठा ना करना, यह भूमि के लिए शब्बात वर्ष होगा। शब्बात काल में भूमि से उत्पन्न उपज तुम सभी के लिए भोजन के लिए होगी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दासों और दासियों के लिए, मजदूरों के लिए, तुम्हारे बीच रह रहे विदेशियों के लिए, तुम्हारे पशुओं और तुम्हारे देश के जंगली पशुओं के लिए। यह उपज सभी के भोजन के लिए होगी। योवेल वर्ष। तुम 7 शब्बात वर्षों की भी गिनती करना, 7 × 7 वर्ष, ये 7 शब्बात वर्ष अर्थात 49 वर्ष हो। 7वें माह के 10वें दिन ऊंची आवाज से तुरी फूकोगे, प्रायश्चित दिवस पर पूरे देश में तुरी फूकोगे। तुम्हें 50वें वर्ष को पवित्र करना होगा और सारे देश के निवासियों के लिए छुटकारे की घोषणा करनी होगी। यह वर्ष तुम्हारे लिए योवेल वर्ष कहलाएगा और तुम में से हर एक की पैतृक संपत्ति अपने अपने परिवार को लौट आएगा। 50वां वर्ष योवेल वर्ष के रूप में मनाया जाए। इस वर्ष ना तो तुम बीज बोना, ना अपने आप उगी हुई फसल इकट्ठी करोगे और ना उन अंगूर की लताओं से अंगूर इकट्ठा करोगे जिन्हें छांटा ना गया हो, क्योंकि यह योवेल है, यह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम खेतों की उपज को खा सकते हो। इस योवेल वर्ष में तुम में से हर एक अपनी पैतृक भूमि को लौट जाएगा। यदि तुम अपने पड़ोसी को कुछ भी बेचो अथवा उससे कुछ भी खरीदो, तो तुम एक दूसरे से छल ना करना। जब तुम अपने पड़ोसी से भूमि खरीदो, तो उसका मूल्य पिछले योवेल के बाद के वर्षों के अनुसार होना आवश्यक है, तथा बेचने वाला भी इसका मूल्य अगले योवेल के पहले के वर्षों का ध्यान रखकर करे। यदि अगले योवेल तक के वर्षों की संख्या अधिक है तो मूल्य बढ़ेगा, यदि वर्षों की संख्या कम है तो मूल्य भी कम होगा। वस्तुतः वह व्यक्ति जो भूमि को बेच रहा है तुम्हें कटनियों की संख्या बेच रहा है। इसलिए तुम एक दूसरे से छल ना करना, परंतु अपने परमेश्वर के प्रति श्रद्धा की भावना रखना, क्योंकि मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरी आज्ञाओं का पालन कर उन्हें व्यवहार में लाना, कि इस प्रकार तुम इस देश में सुरक्षा पूर्वक निवास कर सको। तब भूमि अपनी उपज उत्पन्न करेगी, ताकि तुम इसको भरपेट खाया करो और इस प्रकार तुम इस देश में सुरक्षा पूर्वक रह सको। किंतु यदि तुम्हारा विचार यह हो, यदि हमने सातवें वर्ष बीज नहीं बोया और उपज इकट्ठा नहीं की, तो हम उस वर्ष क्या खाएंगे? तब छठे वर्ष में मैं तुम्हारे लिए अपनी आशीषों को आदेश दूंगा कि भूमि तीन वर्षों के लिए पर्याप्त उपज उत्पन्न करे। जब तुम आठवें वर्ष बीज बोओगे, तो तब भी तुम बीते वर्षों में इकट्ठा की गई उपज को खा सकोगे। आठवें वर्ष की उपज आने पर भी तुम नौवें वर्ष तक इसको खा सकोगे। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि तो मेरी है, तुम तो मेरे साथ परदेशी और बाहरी मात्र हो। जब भी भूमि को खरीदो, तो खरीददार यह ध्यान रखे कि बेचने वाले को इसके छुड़ाने का अधिकार है। यदि तुम्हारा कोई संबंधी इतना निर्धन हो जाता है कि उसे अपनी संपत्ति के अंश को बेचना पड़ता है, तो उसके नजदीकी छुड़ाने वाला आकर उस संपत्ति को खरीद ले जो उसके संबंधी द्वारा बेची गई है। और यदि उस व्यक्ति का कोई छुड़ाने वाला नहीं है, किंतु वह स्वयं ही इतना समृद्ध हो गया है और अपनी भूमि को छुड़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन है, तो वह इसके बेचे गए वर्षों से गिनती करे और जिस व्यक्ति को उसने यह बेचा था उसे इसका बाकी मूल्य चुका दे, और इस प्रकार उसे अपनी संपत्ति दोबारा प्राप्त हो जाएगी। किंतु यदि उसके पास इसे दोबारा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तब जो कुछ उसने बेचा है वह सब योवेल वर्ष तक उसके खरीददार के पास ही रहेगा, किंतु योवेल वर्ष में यह छूटकर इसके असली स्वामी के पास लौट जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति शहर पना वाले नगर में अपने घर को बेचता है, तो उसके छुड़ाने का अधिकार उसके बेचने के दिन से एक वर्ष तक मान्य रहेगा। छुड़ाने का उसका अधिकार पूरे एक वर्ष तक बना रहेगा, किंतु यदि पूरे एक वर्ष की अवधि में इसको नहीं खरीदा गया, तब उस शहर पना वाले नगर में उस घर का अधिकारी स्थायी रूप से उसके खरीददार और उसकी आने वाली सभी पीढ़ियों का हो जाएगा। यह घर योवेल वर्ष में छुड़ाया नहीं जाएगा, किंतु बिना शहरपना वाले गांवों के घरों को खेतों के बराबर समझा जाए, इनको छुड़ाया जा सकता है और वे योवेल वर्ष में छुड़ा दिए जाएंगे। जहां तक लेवियों के नगरों का संबंध है, लेवियों को अपने नगरों के घरों के जो उनकी संपत्ति है छुड़ाने का स्थायी अधिकार है। इसलिए जो कुछ भी लेवियों का है उसको छुड़ाया जा सकता है, और नगर में उनकी संपत्ति से बेचा गया वह घर योवेल वर्ष में छुड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसराइल के घराने के बीच लेवियों के नगरों के घर उनकी संपत्ति है, किंतु उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि को ना बेचा जाए, क्योंकि यह उनकी स्थायी संपत्ति है। यदि तुम्हारा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और यदि वह अपना हाथ तुम्हारे सामने फैलाए, तो तुम उसकी ठीक उसी प्रकार सहायता करना मानो वह कोई विदेशी अथवा यात्री हो, ताकि वह तुम्हारे साथ रह सके, उससे ब्याज अथवा लाभ ना लिया जाए, बल्कि तुम अपने परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखना कि तुम्हारा भाई बंधु तुम्हारे साथ रह सके। तुम उसे ना तो अपना धन ब्याज पर दोगे और ना ही भोजन लाभ कमाने के लालच से। मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकालकर लाया हूँ कि तुम्हें कनान देश प्रदान करूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊँ। यदि तुम्हारा कोई भाई बंधु इतना कंगाल हो जाए कि स्वयं को तुम्हें बेच दे, तो तुम उससे दास के समान सेवा ना लेना। वह तुम्हारे साथ मजदूरी पाने वाले व्यक्ति के समान रहे, मानो कि वह कोई यात्री हो। वह तुम्हारे साथ योवेल वर्ष तक काम करेगा, फिर वह तुम्हारे अधिकार से मुक्त हो जाएगा। वह और उसके साथ उसकी संतान अपने गोत्र और अपने पूर्वजों की संपत्ति को लौट जाएगी, क्योंकि इज़राइल तो मेरे सेवक हैं, जिन्हें मैं मिस्र से निकालकर लाया था। उनको दास के समान बेचा ना जाए। तुम उस पर कठोरता पूर्वक शासन ना करना, बल्कि अपने परमेश्वर के प्रति श्रद्धा बनाए रखना। जहां तक तुम्हारे दास दासियों का संबंध है, तुम अपने पड़ोसी गैर यहूदी देशों से दास और दासियां प्राप्त कर सकते हो। तुम अपने बीच रह रहे यात्रियों से भी दासों को कर सकते हो, तथा उनके गोत्रों से भी जिनका जन्म तुम्हारे देश में ही हुआ है और वे तुम्हारे बीच ही रह रहे हैं, वे भी तुम्हारी संपत्ति हो सकते हैं। तुम उन्हें संपत्ति के समान अपने पुत्रों के अधिकार में स्थायी मीरास के रूप में भी दे सकते हो, तथा उनका प्रयोग स्थायी दासों के समान कर सकते हो। किंतु तुम इज़राइल के घराने में से अपने भाई बंधुओं पर कठोरता पूर्वक शासन ना करना। यदि तुम्हारे साथ का कोई विदेशी अथवा यात्री धनी हो जाए और तुम्हारा कोई भाई बंधु कंगाल तथा वह स्वयं को उस विदेशी अथवा यात्री या उस विदेशी के कुल को बेच दे, तो उसके बिकने के बाद उसको निकाला जा सकता है। उसके भाई बंधुओं में से कोई एक भाई उसको छुड़ा सकता है। उसका चाचा अथवा उसका चाचा का पुत्र और उसके परिवार से कोई उसका कोई सगा संबंधी उसको छुड़ा सकता है, अथवा यदि वह धनी हो जाए तो वह स्वयं को ही छुड़ा सकता है। वह अपने खरीदार के साथ अपने बिकने के दिन से लेकर योवेल वर्ष तक के समय की गिनती करे। उसके बिकने का मूल्य उसके द्वारा पिछले वर्षों के अनुसार हो। उसके द्वारा उसके स्वामी के साथ बिताया गया समय किसी मजदूर द्वारा बिताए गए समय के समान ही है। किंतु यदि योवेल वर्ष तक अभी अनेक वर्ष बाकी है, तो वह अपने छुड़ाए जाने के लिए अपने बिकने के दाम के बराबर में लौटा दे। और यदि योवेल वर्ष में अभी कुछ ही वर्ष बाकी रह गए हैं, तो वह अपने स्वामी के साथ इनकी गिनती करे और उन वर्षों के अनुसार अपने छुड़ाने के मूल्य को लौटा दे। वह उसके साथ हर एक वर्ष मजदूर के अनुसार ही रहेगा और वह तुम्हारे सामने उस पर कठोरता पूर्वक शासन ना करे। किंतु यदि इनमें से किसी भी रीति से उसको छुड़ाया नहीं गया, तो योवेल वर्ष में वह छूट जाएगा, वह और उसके साथ उसकी संतान भी, क्योंकि इज़राइल का घराना मेरा दास है। ये मेरे वे दास हैं जिन्हें मैं मिस्र देश से छुड़ाकर लाया हूँ। मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ।
लेवी व्यवस्था अध्याय 26। आज्ञाकारिता की आशीषे। ना तो तुम अपने लिए मूर्तें बनाओगे और ना ही किसी खुदी हुई मूरत अथवा पवित्र पत्थर बनाओगे और ना ही उसके सामने झुकने के उद्देश्य से किसी पत्थर में से मूरत गढ़ोगे, क्योंकि मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम मेरे शब्बातों का पालन करो और मेरे पवित्र स्थान का सम्मान, मैं ही यहावे हूँ। यदि तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन कर उन्हें व्यवहार में लाओगे, तो मैं वर्षा ऋतु में तुम्हें बारिश दिया करूँगा, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अपनी उपज और मैदान के वृक्ष फल उत्पन्न करेंगे। तुम्हारी दावनी तुम्हारी अंगूर की उपज इकट्ठा करने तक चलेगी और तुम्हारी अंगूर की उपज बीज बोने तक। इस प्रकार तुम भरपेट भोजन करोगे और इस प्रकार तुम इस देश में सुरक्षापूर्वक निवास कर सकोगे। देश में मेरे द्वारा दी गई शांति बसेगी, जिससे कि तुम आराम कर सको। कोई तुम्हें भयभीत ना करेगा। मैं उस देश से हिंसक पशुओं को भी दूर कर दूंगा और तुम्हारे देश में कोई भी तलवार से मारा ना जाएगा। किंतु तुम अपने शत्रुओं का पीछा करोगे और वे तलवार के वार से तुम्हारे सामने मारे जाएंगे। तुम में से 5 100 को और 110,000 को खदेड़ डालेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार के वार से तुम्हारे सामने मारे जाएंगे। फिर मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम्हें फलवंत कर तुम्हारी संख्या बहुत बढ़ाऊंगा और तुम्हारे साथ की गई मेरी वाचा को पूरी करूंगा। तुम पुरानी उपज को खाओगे और नई उपज को स्थान देने के उद्देश्य से पुरानी को हटा दोगे। इसके अलावा मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा और मेरा प्राण तुमसे घृणा ना करेगा। मैं तुम्हारे बीच चला फिरा भी करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा और तुम मेरी प्रजा। मैं यहावे ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से निकालकर लाया है कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रह जाओ। मैंने तुम्हारे जुए की पट्टियों को तोड़ दिया है और तुम्हें सीधा होकर चलने में सामर्थ किया है। अनाज्ञाकारिता का दंड। किंतु यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सारी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, यदि तुम मेरी विधियों को नकार दोगे, तुम्हारे प्राण मेरे निर्णयों को इतना तुच्छ जानेंगे कि तुम मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करना ही छोड़ दो और इस प्रकार मेरी वाचा को तोड़ ही डालो, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ यह करूंगा कि मैं तुमको अचानक ही आतंक, क्षय रोग और ज्वर पीड़ित कर दूंगा, जिसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी तथा तुम्हारे प्राण मुरझा जाएंगे। तुम्हारा बीज आरोपण भी व्यर्थ ही होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु इसको खा लेंगे। मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा, जिससे तुम्हारे शत्रु तुम्हें हरा देंगे और जो तुमसे घृणा करते हैं वे तुम पर शासन करेंगे। जब तुम्हारा पीछा कोई भी ना कर रहा होगा, तब भी तुम भागते रहोगे। इतना सब होने पर भी यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों का 7 गुना दंड दूंगा। मैं तुम्हारे बल के घमंड को समाप्त कर दूंगा और तुम्हारे आकाश को लोहे के समान और तुम्हारी भूमि को कांसे के समान बना दूंगा। तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत बेकार होगी, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज पैदा ना करेगी और ना ही देश के वृक्ष अपना फल उत्पन्न करेंगे। इतना होने पर भी यदि तुम अपना स्वभाव मेरे विरुद्ध ही रखोगे और मेरी आज्ञा ना मानोगे, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम पर महामारी में 7 गुना वृद्धि कर दूंगा। मैं तुम पर जंगली जानवर भेज दूंगा, जो तुम्हें संतानहीन बना डालेंगे और तुम्हारे पशुओं को नष्ट कर डालेंगे। वे तुम्हारी संख्या इतनी कम कर देंगे कि तुम्हारे रास्ते निर्जन रह जाएंगे। यदि इस ताड़ना के बाद भी तुम मेरी ओर ना मुड़े, बल्कि मेरे विरुद्ध शत्रुता भाव ही बनाए रखा, तो मैं भी तुमसे शत्रुता भाव रखूंगा और मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम पर 7 गुना आक्रमण करूंगा। मैं तुम पर एक तलवार भेजूंगा, जो वाचा को तोड़ने का पूरा बदला लेगी। जब तुम अपने नगरों में इकट्ठे होगे, मैं तुम्हारे बीच महामारी भेजूंगा और तुम शत्रुओं के अधीन कर दिए जाओ। जब मैं तुम्हारे भोजन के आधार को दूर कर दूंगा, तब 10 महिलाएं एक ही चूल्हे पर रोटी सेकेंगी और वे इन्हें तोल तोल कर छोटी संख्या में बांट देंगी कि तुम उनको खाओगे परंतु तृप्त ना होगे। इतना सब होने पर भी यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, बल्कि मेरे विरुद्ध शत्रु सा व्यवहार ही बनाए रखोगे, तब मैं अत्यंत क्रोधित होकर तुमसे शत्रुता रखूंगा और मैं तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें 7 गुना दंड दूंगा। तुम अपने पुत्रों के मांस को खाओगे और तुम अपनी पुत्रियों के मांस को खाओगे। मैं तुम्हारे ऊंचे पूजा स्थलों को नाश कर तुम्हारी धूप वेदियों को तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे शवों को तुम्हारी मूर्तियों के ढेर पर फेंक दूंगा और मेरा आत्मा तुमसे घृणा करेगा। मैं तुम्हारे नगरों को भी उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को सूना कर दूंगा। मैं तुम्हारी सुखद सुगंध को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे नगरों को सूना बना दूंगा, जिससे कि तुम्हारे शत्रु जो वहां बसने आएंगे इसे देख भयभीत हो जाएंगे। तुम जाति जाति के बीच बिखर जाओगे और तलवार तुम्हारा पीछा करेगी। तुम्हारा देश निर्जन और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारे इस भूमि पर निवास करने की स्थिति में भूमि को जो विश्राम तुम्हारे शब्बातों में प्राप्त नहीं हुआ था, वह उस विश्राम अब इस पूरे खाली समय की अवधि में प्राप्त होगा। इस प्रकार भूमि को अपने शब्बात प्राप्त हो जाएंगे। जब तुम अपने शत्रुओं के देश में जाओगे, तब सूनेपन की अवस्था में भूमि अपने शब्बातों का आनंद उठाएगी। तुम में जो बचे रह गए होंगे, मैं उनके शत्रुओं के देश में उनका मनोबल इतना कमजोर कर दूंगा कि वे हवा के द्वारा छितराए पत्ते की खड़खड़ाहट सुनकर भाग खड़े होंगे। जब कोई उनका पीछा भी नहीं कर रहा होगा तो भी वे भाग खड़े होंगे, मानो कोई तलवार लिए उनका पीछा कर रहा हो, और वे गिर गिर पड़ेंगे। वे लड़खड़ाकर एक दूसरे पर ऐसे गिरेंगे मानो वे तलवार से भाग रहे हो, जबकि कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा होगा। तुम्हारे शत्रुओं के सामने खड़ा होने के लिए तुम्हारे अंदर शक्ति ना बचेगी। तुम बंधुआई में देशों के बीच नाश हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं का देश तुम्हें चट कर डालेगा। तुम में से जो बचे रह जाएंगे वे अपने और उनके पुरखाओं के अधर्म के कारण उनके शत्रुओं के देश में गल जाएंगे। यदि वे अपनी और अपने पूर्वजों के उन अधर्मों को स्वीकार कर लेंगे जो उन्होंने अपने विश्वासघात और मेरे विरुद्ध शत्रु के भाव की स्थिति में की थी, जिससे मैंने भी उनके विरुद्ध हो उन्हें उनके शत्रुओं के देश में बसा दिया, अथवा उनका खतना रहित हृदय इस प्रकार दब जाए कि वे अपने अधर्मों के लिए प्रायश्चित कर लें, तो मैं याकूब के साथ अपनी वाचा को, यित्साहक के साथ अपनी वाचा को और अब्राहम के साथ अपनी वाचा को और इस देश को भी स्मरण करूंगा। किंतु उनके निकल जाने के कारण यह देश सूना हो जाएगा कि यह भूमि अपने शब्बातों के नुकसान की पूर्ति कर ले। इसी अवधि में वे अपने अधर्मों के लिए प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे नियमों को नकार दिया था और मेरी विधियों से घृणा की थी। इतना होने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब भी मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और ना ही उनसे इतनी घृणा करूंगा कि मैं उनका नाश कर दूं और उनके साथ अपनी वाचा को भंग करूं। मैं ही यहावे उनका परमेश्वर हूं। मैं उनके उन पूर्वजों से की गई वाचा को स्मरण करूंगा जिन्हें मैं जातियों के देखते देखते मिस्र से निकालकर लाया था कि मैं उनका परमेश्वर हो जाऊं। मैं ही यहावे हूं। यही वे विधियां, व्यवस्था और नियम है जिन्हें यहावे ने मोशे के द्वारा सिनाई पर्वत पर अपने और इसराइल के घराने के बीच ठहराई। लेवी व्यवस्था अध्याय 27। मन्नत और छुटकारे के नियम। यहावे ने मोशे को यह आज्ञा दी, इसराइल के घराने को यह आज्ञा दो, जब कोई किसी व्यक्ति को यहावे के लिए भेंट करने की विशेष मन्नत माने तो उस व्यक्ति के ठहराए हुए मूल्य को इस प्रकार तय किया जाए, 20 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के पुरुष के लिए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार चांदी के 50 शेकेल, यदि कोई स्त्री है तो उसके लिए 30 शेकेल, 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की आयु के युवक के लिए 20 शेकेल तथा युवती के लिए 10 शेकेल, 1 माह से 5 वर्ष तक की आयु के बालक के लिए चांदी के 5 शेकेल तथा बालिका के लिए चांदी के 3 शेकेल, 60 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के पुरुष के लिए 15 शेकेल तथा स्त्री के लिए 10 शेकेल। किंतु यदि कोई इतना कंगाल है कि वह ठहराया हुआ मूल्य ना दे पाए तो उसे पुरोहित के सामने ले जाए और पुरोहित उसका मूल्य तय करे। पुरोहित उस व्यक्ति के साधनों के अनुसार ही उसका मूल्य तय करेगा जिसने मन्नत मानी है। यदि मन्नत के रूप में यहावे को एक पशु भेंट किया जाना है तो यहावे को चढ़ाया गया पशु पवित्र माना जाएगा। वह ना तो इसको बदले, ना तो अच्छे के लिए बुरा और ना ही बुरे के लिए अच्छा, किंतु यदि कोई ऐसा बदला कर भी लेता है तो वह पशु और उसके बदले दूसरा पशु दोनों ही पवित्र माने जाएंगे। किंतु यदि मन्नत का पशु अशुद्ध हो और यहावे को बलि देने योग्य ना हो तो वह उस पशु को पुरोहित के सामने लाए, पुरोहित उसे अच्छा या बुरा ठहराए और जो पुरोहित तय करेगा वही मान्य होगा। यदि वह उसको छुड़ाना चाहे तो तय मूल्य के अलावा उसका पांचवा भाग भी चुकाए। यदि कोई अपना घर पवित्र कर यहावे के लिए अलग करे तो पुरोहित द्वारा इसको अच्छा या बुरा ठहराया जाए और जो पुरोहित तय करेगा वह मान्य होगा। यदि वह व्यक्ति जिसने इसे पवित्र किया है वह अपने घर को छुड़ाना चाहे तो तय मूल्य के अलावा उसका पांचवा भाग भी चुकाए, जिससे वह घर उसका हो जाएगा। यदि कोई अपनी पैतृक संपत्ति के खेतों को यहावे के लिए पवित्र करे तो उसका मूल्य उसमें लगे बीज के अनुसार ठहराया जाए। बोने के लिए 10 एफा बीज के लिए चांदी के 50 शेकेल। यदि वह योवेल वर्ष से ही अपना खेत पवित्र करे तो ठहराया गया मूल्य पूरा पूरा दिया जाए। किंतु यदि वह योवेल वर्ष के बाद अपना खेत पवित्र करे तो पुरोहित आने वाले योवेल वर्ष तक जितने वर्ष बचे हैं उनकी संख्या के अनुसार खेत का ठहराया हुआ मूल्य कम कर दे। यदि वह व्यक्ति जिसने इसे पवित्र किया है स्वयं इसे छुड़ाना चाहता है तो ठहराए गए मूल्य के अलावा उसका 5वां अंश भी चुकाए कि वह खेत उसे लौटा दिया जाए। किंतु यदि वह उस खेत को नहीं छुड़ाना चाहता और उसे किसी दूसरे को बेच देता है तब उस खेत को नहीं छुड़ाया जा सकता। यदि योवेल वर्ष में वह खेत छूट जाता है तो वह यहावे के लिए पवित्र खेत के समान अलग माना जाएगा, वह खेत पुरोहित की संपत्ति हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति यहावे के लिए ऐसा खेत पवित्र करे जिसे उसने खरीदा हो और जो उसकी पैतृक संपत्ति का भाग ना हो तो पुरोहित योवेल वर्ष तक जितने वर्ष रह गए हो उसके आधार पर उस खेत का मूल्य तय करे और उस दिन पुरोहित तुम्हारे इस बेचने के दाम को यहावे के लिए पवित्र दान के स्वरूप दे दे। योवेल वर्ष में वह खेत उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए जिससे उसने वह खेत खरीदा था, अर्थात उस व्यक्ति को जो उस खेत का असली स्वामी है। तुम्हारा हर एक बेचने का दाम ठहराए गए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार ही हो और 1 शेकेल 20 गेरा का हो। किंतु पशुओं के पहलौठे पर सिर्फ यहावे का अधिकार है, कोई भी उसे समर्पण ना करे, चाहे वह बैल हो अथवा मेढ़ा, उस पर यहावे का अधिकार है। किंतु अशुद्ध पशुओं के पहलौठे के लिए वह ठहराए गए मूल्य के अलावा 5वां अंश भी जोड़कर भुगतान कर उसको छुड़ा ले। यदि इसको छुड़ाया ना गया हो तो वह तुम्हारे ठहराए गए मूल्य पर बेच दिया जाए। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति में से जो कुछ भी यहावे के लिए अलग करता है, मनुष्य पशु या पैतृक संपत्ति में से खेत, उसको ना तो बेचा जाए और ना ही उसको छुड़ाया जाए। जो कुछ यहावे को पूरी तरह से समर्पित है वह यहावे के लिए परम पवित्र है। जो मनुष्य यहावे के लिए अलग किया गया है उसे छुड़ाया ना जाए, जरूरी है कि उसका वध कर दिया जाए। भूमि का 10वां अंश चाहे वह खेत की उपज का हो या वृक्षों के फलों का, उस पर यहावे का अधिकार है, वह यहावे के लिए पवित्र है। इसलिए यदि कोई अपने 10वें अंश का कुछ छुड़ाना चाहे तो वह उसमें उसके ठहराए गए मूल्य का 5वां अंश भी जोड़ दे। गाय बैलों और भेड़ बकरियों का हर एक 10वां पशु जो चरवाहे की लाठी के नीचे से निकलता है वह यहावे के लिए पवित्र है। वह उनमें अच्छे और बुरे पशु में भेद ना करे और ना उनको बदले। किंतु यदि कोई ऐसे बदल भी लेता है तो वह पशु और उसके बदले के पशु दोनों ही पवित्र माने जाएंगे, इनको छुड़ाया ना जाए। यही वे आदेश है जिन्हें यहावे ने मोशे को इज़राइल के घराने के लिए सिनाई पर्वत पर दिए।